السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
وعلیکم السلام ورحمۃ
اللہ وبرکاتہ. نحمدہ نصلی علی رسولہ الکریم. الحمد للہ رب العالمین. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. میری گفتگو کا عنوان ہے Who will open the door of Jannah؟ جنت کا دروازہ میرے لیے کون کھولے گا؟ Who will open the door of Jannah for me؟ تجھے تو کیا تیرے جلووں کی ذوبی پا نہ سکے، تجھے تو کیا تیرے جلووں کی ذوبی پا نہ سکے، جو زندگی کو تیری راہ میں لٹا نہ سکے. حیات شوق بھی ایک سجدہ مسلسل ہے، حیات شوق بھی ایک سجدہ مسلسل ہے، سر نیاز جھکایا تو پھر اٹھا نہ سکے. میری نظر میں وہی سر ہے، سر جسے عامر زمانہ کاٹ تو ڈالے مگر جھکا نہ سکے. خواہش ہر ایک پوری ہوئی اس کے بعد کیا، دنیا اگرچہ مل بھی گئی پھر اس کے بعد کیا. پیشانی بہار پہ تحریر ہے خزاں، پھولوں سے شاخ شاخ سجی پھر اس کے بعد کیا. صحرا کو بادلوں نے سمندر بنا دیا، صحرا کو بادلوں نے سمندر بنا دیا. شولوں کی پیاس بجھ بھی گئی پھر اس کے بعد کیا. دنیا اگرچہ مل بھی گئی پھر اس کے بعد کیا. عمر عزیز جبکہ فنا کے سفر میں ہے، عمر عزیز جبکہ فنا کے سفر میں ہے، مٹی میری گلاب ہوئی پھر اس کے بعد کیا. اس کا ہی غم نہیں غم دنیا بھی ہے مجھے، اس کا ہی غم نہیں غم دنیا بھی ہے مجھے. مانا نجات اس سے ملی پھر اس کے بعد کیا. اے دوست شہر دل بھی بسے تب تو بات ہے، اے دوست شہر دل بھی بسے تب تو بات ہے. بستی وگرنہ بس بھی گئی اس کے بعد کیا. خواہش ہر ایک پوری ہوئی پھر اس کے بعد کیا. کھو گیا کھیلتے بچے کی طرح وقت کی بھیڑ میں ایک پل میرا. چلتے رہنا ہے مسلسل ہمیں تھکنا نہیں، چلتے رہنا ہے مسلسل ہمیں تھکنا نہیں. راہ گزر اپنی ہے آخر یہ سفر اپنا ہے. خار کو گل میں بدل دیں یہ ہنر اپنا ہے، خار کو گل میں بدل دیں یہ ہنر اپنا ہے. دنیا کی ہر جنگ وہی لڑ جاتا ہے، دنیا کی ہر جنگ وہی لڑ جاتا ہے جس کو اپنے آپ سے لڑنا آتا ہے، دنیا کی ہر جنگ وہی لڑ جاتا ہے جس کو اپنے آپ سے لڑنا آتا ہے. پردہ جب گرنے کے قریب آتا ہے، پردہ جب گرنے کے قریب آ جاتا ہے تب جا کر کچھ کھیل سمجھ میں آتا ہے. جب زندگی کی کہانی ختم ہونے لگتی ہے، جب انسان بوڑھا ہو جاتا ہے، جوانی ساتھ چھوڑ دیتی ہے، پردہ جیسے ڈرامہ یا کھیل یا سین پورا ختم ہو کے جب اینڈ آتا ہے نا، پردہ جب گرنے کے قریب آ جاتا ہے تب جا کر کچھ کھیل سمجھ میں آتا ہے. دریا کا سارا نشہ اترتا چلا گیا، مجھ کو ڈبویا اور میں ابھرتا چلا گیا. ہر سانس عمر بھر کسی مرہم سے کم نہ تھی، میں جیسے کوئی زخم تھا بھرتا چلا گیا. منزل سمجھ کے بیٹھ گئے جن کو چند لوگ، میں ایسے راستوں سے گزرتا چلا گیا. دنیا سمجھ میں آئی مگر آئی دیر سے، ارے کچا بہت تھا رنگ اترتا چلا گیا. تو یہ چند ایک اشعار تھے جس سے اس بات کا احساس ہوتا ہے کہ زندگی کی حقیقت کیا ہے، اور زندگی جو میرے اور آپ کے پاس ہے یہ بہت تھوڑی ہے، اور اللہ رب العزت کا اس کائنات میں جو ایک رنگ ہے، جو ایک رخ ہے، وہ اس طرح سے ہے کہ इस कायनात के अंदर जो है तज़ाद है, तनवो है, इख्तलाफ है। सुबह होती है तो शाम होती है, रात जो आती है तो वो सुबह जो है वो चमकता हुआ सूरज जो है वो रात के इख्तिताम का ऐलान कर देता है। जवानी है तो बुढ़ापा है, और फिर इस कायनात की सबसे सच्ची सबसे सुच्ची हकीकत जो कुरान में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त फरमाते हैं सूरत मुल्क में, अल्लज़ी खलक़ल मौत वल हयात लियब्लुवकुम अय्युकुम अहसनु अमला, कि जिसने ज़िंदगी और मौत को पैदा किया ताकि तुम्हारा इम्तहान लेकर देखे। और यहाँ पे लियब्लुवकुम, लियब्लुवकुम बलोनी तो आपने सुनी होगी ना, मदानी को बलोनी को जब दही में डालते हैं और खूब चलाते हैं, खूब चलाते हैं, आप ख़ुद भी पसीना पसीना होते हैं और फिर कहीं मक्खन जो है वो ऊपर आता है। जब दही इम्तहान में से आजमाइश में से गुज़रता है तो फिर लस्सी अलग होती है, फिर मक्खन अलग होता है। तो लियब्लुवकुम, ताकि तुम्हें आजमा कर देखूँ। हर दौर के इंसान को, पैगम्बरों को भी अल्लाह ने आजमाया और आम इंसानों को भी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने आजमाया, और अल्लाह की बात कभी झूठी नहीं हो सकती। तो मकसद क्या है इस इम्तहान का, कि मेरे जवान बेटे की जब वो 25.5 साल का हुआ तकरीबन, तो फिर उसका इंतकाल हो गया, उसकी खबर होगी, और वो भी सडन डेथ, और वो भी बड़ी दर्दनाक डेथ। तो इस सब का मकसद क्या है, लियब्लुवकुम अय्युकुम अहसनु अमला। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त कहते हैं कि ताकि तुम्हारा इम्तहान लेकर देखूं कि तुम में से बेस्ट अमल करने वाला कौन है। और मेरी और आपकी गुजरती हुई ज़िंदगी में हर लम्हा, हर सांस, हर घड़ी, हर सुबह, हर शाम मुझे और आपको अपनी मौत के करीब कर रही है, अल्लाह की मुलाकात के करीब कर रही है। लियौमा यकूमुन्नासु लिरब्बिल आलमीन, लियौमा उस दिन के लिए, यकूमुन्नासु जब लोगों को खड़ा किया जाएगा, लिरब्बिल आलमीन सारे रब के जहानों का, सारे जहानों का जो रब है उसके सामने खड़ा किया जाएगा। तो वो दिन जो है वो मेरे और आपके ऊपर भी अनकरीब आने वाला है, और हर एक की मौत के साथ उसके अमलों का जो दरवाज़ा है वो ख़त्म हो जाता है। मेरा जैसे कि मैंने आपसे कहा कि मेरे लिए जन्नत का दरवाज़ा कौन खोले, तो मैं कौन हूँ, मैं से मुराद हर मुसलमान मर्द और हर मुसलमान औरत है। और ये अजब हुस्ने इत्तफाक है कि आज इससे सही मानों में मैं ही मुराद हूँ, क्योंकि अभी हाल ही में मेरे जवान बेटे की डेथ हुई है, मैं और मेरा शौहर। और इसी तरह हर वो बहन, हर वो भाई, दुनिया भर के तमाम मुसलमान, खा वो दुनिया के किसी मुल्क से किसी शहर से, किसी गोशे से, किसी किनारे से ताल्लुक़ रखते हैं, और उनके बच्चे जो हैं वो फौत हुए हैं, खा वो माँ की पेट में, खा वो पैदा होने के फौरन बाद, खा वो थोड़े से बड़े होकर, या फिर वो ऐन जवानी के वक्त, जब फूल महकता है, जब फूल खिलता है, जब उसकी खुशबू, उसकी महक और उसका बांखपन और उसका हुस्न, उसकी रानाई, उसकी दिलफरेबी जो है वो भली लगती है, दिलों को अच्छी लगती है। तो आप सोचें कि एक बच्चा जो पेट में फौत हो जाए, एक पैदा होने के बाद, एक छोटा सा बड़ा होकर, और एक ऐन जवानी में फौत हो जाए, तो जो शख्स जितना ज़्यादा इसमें से गुज़रेगा तो उतना ही ज़्यादा उसका वो सख्त इम्तहान है, उतना ही सख्त इसका इम्तहान है। तो बहसियत मुसलमान के, मैं और मेरा शौहर, मैं और जाहिद, नसरीन और जाहिद, और हर मुसलमान, हम सब जो हैं वो अल्लाह पर ईमान लाते हैं। अमन तो बिल्लाही व मलाइकतिही व कुतुबिही व रसूलिही वल यौमिल आखिरी वल क़द्र खैरिही व शर्रही मिनल्लाही तआला व अलबास बादल मौत, तो जिसमें ये सब चीज़ें आ जाती हैं कि हम सब इस पर ईमान लाते हैं। तो ईमान लाने वालों के लिए जो है वो जन्नत का भी फिर जिक्र है। जन्नत है क्या, हर मुसलमान का मकसद हयात, जन्नत क्या है, जहाँ खुशियाँ ही खुशियाँ हैं, जहाँ मुसरतें ही मुसरतें हैं, जहाँ शादमानियाँ हैं, जहाँ कोई गम नहीं है, वो इतनी खूबसूरत है, वो इतनी अच्छी है, वो इतनी आला है, वो इतनी अरफा है कि कोई शख्स उसका तसव्वुर भी नहीं कर सकता। हर तरह की राहत, हर तरह की अजमत, हर तरह का सुकून, हर तरह की अयाशी, ऐशो इशरत जिसका भी एक इंसान तसव्वुर कर सकता है। बल्कि हदीस में तो हमें यह मिलता है कि कोई जन्नत का तसव्वुर भी नहीं कर सकता। तो वो जन्नत है, वो मकाम अजीम है जो कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने अहले ईमान के लिए, कलमा पढ़ने वालों के लिए और उसके फ़ैसलों पर जो अमन्ना व सदकना कहते हैं, जो उसके फ़ैसलों को इस तरह से दिल की गहराइयों से कबूल करते हैं कि अपना वजूद, अपनी मर्ज़ी, अपनी ख्वाहिश और मेरा ये दिल चाहता है, वो इस दिल के सुपुर्द नहीं करते कि मेरा ये दिल चाहता है, वो अपने रब के जब सुपुर्द कर देते हैं तो ऐसे लोगों के लिए अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने जन्नतुल फिरदौस का वादा किया है। जन्नत का जिक्र कुरान मजीद में 66 जगह पर आया है, 66 मकामात पर, जिसमें और जन्नत के लफ्जी मानी ऐसा घना बाग कि जिसमें इतने घने दरख्त हों कि ज़मीन जो है उसको छुपा दिया जाए। जीम नून नून छुपी हुई चीज़ को कहते हैं, जिन को भी कहा जाता है, जनीन जो माँ के पेट में बच्चा होता है उसको भी कहता है, कहा जाता है, क्योंकि वो आँखों से नज़र नहीं आता। तो इसी तरह से जन्नत जो है इसका जिक्र हमें कुरान में मिलता है और वो मेरी और आपकी निगाहों से पोशीदा है। और वहाँ एक बाग नहीं, जन्नात 69 जगह पे अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने जन्नात जन्नात का जिक्र किया है कि एक बाग नहीं, अनगिनत बाग होंगे। फिर कहीं कुरान ने उसको दारुस्सलाम के नाम से याद किया है, क्योंकि दुनिया हम समझते हैं ना कि यहाँ पीस है, यहाँ खुशहाली है। कोई पाकिस्तान से अमेरिका ढूंढ भागता है और कोई अमेरिका और कनाडा से और ऑस्ट्रेलिया से जो है वो पाकिस्तान और इंडिया का सफ़र तय करता है, कोई इधर कोई उधर। कभी आप गौर किया करें, कभी आप मुशाहिदा किया करें। मैं मुझे सोचने की बहुत आदत है और मैं ऐसे देखती हूँ कि इधर से भागने वाले उधर भागते हैं कि उधर का माहौल अच्छा है, वहाँ सुकून है, उधर से भागने वाले इधर आते हैं कि शायद ज़िंदगी यहाँ पे जो है वो सोने की जो है वो दरख्त हैं और दरख्तों से डॉलर लटकते हैं और दूध की नहरें बहती हैं, दूध और शहद की। लेकिन हर इधर से उधर और उधर से इधर भागने वाला किसी को सुकून ना मिल सका सवाए अल्लाह के पाक कलाम में और सवाए दीन इस्लाम को समझने में और उस पर अमल करने वाले में। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त कहते हैं अपने अहले ईमान के लिए जो अल्लाह के फ़ैसलों को कबूल करते हैं उनके बारे में कहते हैं, लहुम दारुस्सलाम इंदा रब्बिहिम, इनके लिए इनके रब के पास सलामती का घर है। सूरत अलनाम आयत 127। फिर अल्लाह सूरत यूनुस 25 में फरमाते हैं, वल्लाहु यद्उ इला दारिस्सलाम, और अल्लाह तुम्हें दारुस्सलाम की तरफ दावत दे रहा है। यानी अब सोचें, मेरा रब ये कह रहा है कि ये जो मैं तुम्हें इम्तहान में डाला है ना, तुम्हारे 25-25 साल जवान बेटे को लिया है, मैं तो तुम्हें सलामती के घर की दावत देता हूँ अगर तुम इस मौके पर सब्र का दामन जो है वो थाम लो, अगर इस मौके पर तुम रब के फैसले पर राजी हो जाओ, अगर इस मौके पर तुम शिकवा और शिकायतें मत करो, अगर तुम इस मौके पर अपने आप को संभाल लो, इसलिए कि इन्नमस सब्रु इंदा सदमतिल उला। अब मुझे बताएं कि आप और मैं अपने माँ बाप पर सबसे ज्यादा एतमाद करते हैं, वो कुछ भी कह देते हैं हम कहते हैं यही हमारे लिए बेहतर है। तो जब मेरे और आपके रब ने, यानी मेरे रब ने, मेरे शोहर जाहिद के रब ने, यानी हम मियाँ बीवी के लिए मेरे रब ने ये फैसला किया जो 70 माओं से बढ़कर मोहब्बत करता है कि अब मैं तुम्हारे बेटे को लेना चाहता हूँ, मुझे इससे कोई नहीं कि ठीक है तुम 8-10 साल से तुम भी जॉब नहीं कर रहे, ठीक है तुम मसाइल में घिरे हुए हो, ठीक है अब तुम्हारे बच्चे की बड़ी अच्छी जॉब लग गई है, तुम्हारा वो राइट हैंड है, वो तुम्हारे सारे ऑफिस के काम करता है, वो बहुत स्मार्ट है, वो बहुत तेज़ है और वो ले दे जाता है बातें करते हुए, और वो तुम्हारा ब्राइट फ्यूचर है, मुसलमानों का ब्राइट फ्यूचर है। यानी सिर्फ तुम्हारा ही नहीं, क्योंकि जब जब जैसे अभी भी मैं अपने मुआज़ बेटे से बात कर रही थी, मैं कह रही थी कि तुमने बैचलर कर लिया, तुम मेडिसिन के लिए अप्लाई कर रहे हो और मुझे उम्मीद है कि इंशाल्लाह तुम डॉक्टर बनोगे और बहुत कामयाब डॉक्टर बनोगे, क्योंकि मुझे ऐसा महसूस होता है कि इंशाल्लाह बनेगा। लेकिन मैंने कहा कि जब तुम डॉक्टर बनोगे तो सिर्फ अपने लिए बनोगे, अपनी ज़ात के लिए पैसा कमाओगे, ठीक है इंसान साथ साथ दावा भी करता है, लेकिन इसके साथ साथ इस सोसाइटी के सिस्टम में भी तुम्हें एंटर होना है। माज याद रखना, मेरी ज़िंदगी का पता नहीं है, लेकिन जब तक इस सोसाइटी के अंदर एंटर नहीं होगे हम इस सोसाइटी को चेंज नहीं कर सकते। यानी इस्लाम का जो इस्लाम है, जो हमारा इन दीना इंदल्लाह इस्लाम बेहतरीन निज़ाम ज़िंदगी है, तो यहाँ पे जैसे हर तरह के मज़ाहिब के लोग आते हैं, ये रहते हैं, तो हम अपने इस्लाम की बेस्ट वैल्यूज़ जो हैं, बेस्ट ज़िंदगी गुजारने का जो तरीक़ा जो है, फिर हम लोगों को जो है वो इंट्रोड्यूस कैसे कराएंगे अगर तुम सिर्फ अपनी ज़ात तक ही डॉलर कमाने में जो है वो लग जाओगे। तो मैंने उसे कह रही थी कि ज़रूर अपनी ज़िंदगी का ये मकसद भी रखना कि तुमने इस्लाम की सोसाइटी के अंदर नुमाइंदगी करनी है, कि मुसलमान इसे कहते हैं, मुसलमान ऐसे होते हैं, और मेरा और आपका काम तो कोशिश करना है, लीडरशिप तैयार करना, क्योंकि आज के मुसलमान को लीडरशिप की बहुत ज़रूरत है। तो बहरहाल कुरान कभी इसको दारुल खुल्द के नाम से याद करता है, क्योंकि मेरा और आपका ये आजकल सब झुर्रियाँ ख़त्म करने में लगे हुए हैं, ये क्रीम लगा लें, वो लोशन लगा लें, प्लास्टिक सर्जरी कर लें, ये हरे ये झुर्रियाँ क्यों आ गई। एक औरत मुझे कहने लगी 30 साल की उम्र से अगर ये लगाते हैं ना क्रीम, तो मुझे पता ही नहीं चला फिर मेरे ये झुर्रियाँ ना आती। 30 से लगाएं या 20 से लगाएं, जो आनी है वो तो आनी ही है, और हमेशगी की ज़िंदगी दुनिया की ज़िंदगी नहीं है। ना आप हमेशा रहेंगे, ना मैं हमेशा रहूँगी, और ना अल्लाह के अंबिया हमेशा रहे। तो क्यों, तो हमेशा का घर कौन सा है? यहाँ की सब चीज़ें फ़ानी हैं, यकीनी ज़िंदगी आखरत की ज़िंदगी है, वहाँ की नेमतें जावेदानी हैं। लहुम फीहा दारुल खुल्द, उसी में हमेशा हमेशा के लिए इनका घर होगा। हामीम सजदा आयत नंबर 28। और फिर और भी बहुत सी जो है वो बातों का जिक्र है, कहीं कुरान जन्नत को दारुल मुकामा कहता है, कहीं कुरान जन्नतुल मावा कहता है, कहीं जन्नात अदन कहता है, कहीं अल्लाह रब्बुल इज्जत को अलफिरदौस के नाम से याद करते हैं। अलफिरदौस, इन्नल्लज़ीन आमनु वअमिलुस्सालिहात, और ये आसान नहीं है, फिर जी और जान की बाजी लगानी पड़ती है, ये पोले पोरे पहले इस्लाम नहीं आवना। इन्नल्लज़ीन आमनु, बेशक वो लोग जो ईमान लाए, वअमिलुस्सालिहात, और जिन्होंने अमले सवाले किए, कैनत लहुम जन्नातुल फिरदौस नुज़ुला, फरमाया उनकी मेज़बानी के लिए फिरदौस के बागात होंगे। तो बहरहाल इसी तरह जन्नत के नाम बहुत से हैं, तो जन्नत के दर्जात भी बहुत से हैं, उसके मराते भी बहुत से हैं, और उनके मराते में फ़र्क भी है, और फिर जन्नत के दरवाज़े बहुत से हैं, जैसे 8 दरवाज़ों का जिक्र मिलता है, और कुछ कुछ नसीब ऐसे होंगे हर दरवाज़े से उनको पुकारा जाएगा, इधर से आएं, इधर से आएं, और अबू बकर सिद्दीक रदी अल्लाह अन्हु का नाम उस पर मिलता है हर दरवाज़े से। जैसे बाज़ स्टूडेंट जब अप्लाई करते हैं, हर यूनिवर्सिटी से उनको आ जाता है वेलकम, आइए, किसी को यानी किसी एक बच्चे ने बताया, बच्ची ने, मैंने अप्लाई किया, क्लिक किया, और मुझे साथ ही जो है ना उनका जवाब आ गया, क्या यू आर एक्सेप्टेड। और कुछ ऐसे होते हैं कि वो 10 और 20 यूनिवर्सिटियों में भी अप्लाई करने के बाद किसी एक दरवाजे से भी उनको जो है वो एक्सेप्टेंस नहीं मिलती। तो ये सब चीज़ें मुझे और आपको क्या पैगाम देती हैं कि जन्नत के तमाम दरवाज़ों में से वो गुजर सकता है जो साहिब ईमान हो, नेक और सवाले कामों का अहतमाम करता रहे, और ताकि अपने ईमान और अमले सवाले की वजह से जन्नत के दरवाज़ों में जो है वो दाखिल हो सके। तो जन्नत क्या है, मैंने थोड़ा सा इसका जो है वो आपको थोड़ा सा तारुफ़, मुख्तसर सा तारुफ़ दिया। अब मेरा सवाल ये है कि इस जन्नत का ज़िक्र मैंने भी सालों से सुना है, और आपने भी सुना है, और इसी जन्नत का ज़िक्र सहाबा और सहाबियात ने भी सुना था। उनका ईमान कैसा जीता जागता ईमान था, ऐसा महसूस होता था कि वो जन्नत को अपनी आँखों से देख रहे हैं, अपनी आँखों के सामने उसको देख रहे हैं, और उस जन्नत के लिए जी और जान की बाजी लगाने के लिए तैयार थे। आज के दौर में कहते हैं कि मुश्किल है, उन्होंने अपने अमल से आयात को जिंदा कर दिया, और अफसोस के आज के मुसलमान ने कुरान की आयात को जो है वो बेजान कर दिया, मुर्दा कर दिया। शराब हराम कर दी गई, शराब के रसिया, हम कहते हैं चाय नहीं छूटती, रोज़े में चाय का क्या बनेगा, मैं तो दिन में 5 मरतबा पीती हूँ। और मेरी बहनों, मक्का की गलियाँ, मदीना की गलियाँ जो है वो गवाही देती हैं, चश्मे फलक ने ये नज़ारे देखे हैं कि मदीना की गलियों में इतनी शराब बहाई गई कि बहुत अरसे तक जब बारिश होती थी तो मदीना की मिट्टी से शराब की खुशबू आती थी। और सिर्फ वही लोग नहीं जो शराब पीने वाले थे, बाज़ का बिज़नेस था शराब का, उन्होंने शराब के मटके तोड़ दिए। हम अपनी ख्वाहिशात के पहाड़ों को कब तोड़ेंगे? हमारे दिलों पर जो बर्फ़ों की सिल लगी हुई है वो कब पिघलेगी? हमारे ईमान जो मुर्दा हो चुके हैं उनमें जान कब पैदा होगी? वक्त बहुत थोड़ा है, वक्त बहुत थोड़ा है। हम अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से क्या कहेंगे कि आपका ये कलाम सिर्फ इसलिए आया था कि हमने सिर्फ इसे बरकत हासिल करनी है? जब मुश्किल होगी, जब परेशानी होगी, जब नया घर बना लेंगे, जब मुर्दा जब फौत हो गया, जब मैया जा रही है तो ढाई पहाड़े पढ़ने हैं और उस वक्त बैठकर हम वो पढ़ेंगे? क्या कुरान इसलिए सिर्फ नाजिल हुआ था? इसमें कोई शक नहीं कि ये बरकत देता है, इसमें कोई शक नहीं कि ये कुरान जो है ये हमारे मसाइल और मुश्किलात का हल का ज़रिया है, हमारी मुश्किलात को ख़त्म करता है, इसमें शिफा भी है। लेकिन तू ही नादा चंद कलियों पे कनात कर गया, तू ही नादा, मैं ही नादा चंद कलियों पे कनात कर गई, वरना गुलशन में इलाजे तंगी ये दामा भी था। तो कुरानी आयात जो हैं मुझे और आपको उनको ज़िंदा करना है, मैंने और आपने, क्योंकि आसमान से फरिश्ते नहीं नाजिल होंगे जो हमें कुरान और हदीस पर अमल करके दिखा सकें। तो ये जो जन्नत है जो मेरी और आपकी ज़िंदगी का मकसद है, सहाबा इसको अपने सामने महसूस करते थे, रब के हुक्म को वो अपने लिए हिर्ज़े जां बना लेते थे, अल्लाह कहता था और वो उसको अपने ऊपर लागू कर लेते थे, सहाबा या सहाबियात। तो ऐसे ही लोगों के लिए जो है वो जन्नत का वादा किया गया है। अच्छा, मेरे भी बेटे की जो है वो वफ़ात हुई है, गम बहुत ताज़ा है और हकीकत यह है कि कौन सी माँ जो है वो अपने बच्चे के लिए तड़पती नहीं होगी और उसको याद नहीं करती होगी, हर नौक पर हर बैल पर उसका इंतज़ार नहीं करती होगी। और कौन सा बाप है जिसकी आंखें अपने बच्चे का इंतज़ार नहीं करती होंगी और उसको याद नहीं करती होंगी? सदमा तो बहुत बड़ा है, आजमाइश तो बहुत बड़ी है, इम्तहान तो बहुत सख्त है, लेकिन ऐसे जब इम्तहान आते हैं तो ऐसे में हम जो है वो कुरान का सहारा लेते हैं, ऐसे मौके पे हम जो हैं रसूलल्लाह की ज़िंदगी का सहारा लेते हैं कि आपने ऐसे मौके पे क्या किया था। फिर हम सहाबा सहाबियात जो हमारे लिए मिशल राह है, फिर हम उनको देखते हैं। ऐसे नहीं कर सकते कि मैं क्या करूँ और फिर हम चीखना चिल्लाना शुरू कर दें, फिर हम मातम करना शुरू कर दें और फिर हम नौहा डालना शुरू कर दें, फिर गरेबान को चाक करना शुरू कर दें, ऐसा नहीं हो सकता। तो जब मेरे बेटे के इंतकाल की खबर मिली तो एग्जैक्ट उसी वक्त मैंने अल्हम्दुलिल्लाह कहा, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का बहुत शुक्र है, और आज भी मैं वही बात कहती हूँ, अल्हम्दुलिल्लाह। और अल्हम्दुलिल्लाह मैं इस पर अपने रब का लाख लाख दफ़ा शुक्र अदा करती हूँ कि हमारे घर में हर एक ने कहा, मेरे शौहर ने भी कहा, मैंने भी कहा, मेरी एक बेटी और बेटा है मुआज़ और आमिना, उन्होंने भी कहा, और सब एक दूसरे को कह रहे थे आपने अल्हम्दुलिल्लाह पढ़ा, आपने इन्ना लिल्लाह पढ़ा, और हमने इन्ना लिल्लाह पढ़ा। फिर उसके बाद तीसरी चीज़ वुज़ू किया, हमने कहा नमाज मुश्किल में वस्तईनु बिस्सब्री वस्सला, अल्लाह की तरफ रुजू करते हैं और अल्लाह ताला से दरख्वास्त करते हैं कि या रब्बुल इज़्ज़त, यानी ये भी हो सकता है कि ये ख़बर जो है वो सही ना हो, क्योंकि एक उम्मीद तो थी कि हो सकता है वो उस गाड़ी में मेरा बेटा नहीं था, गाड़ी क्योंकि वो दूसरों को राइड भी बहुत देता था, जब गाड़ी नहीं भी थी वो बसों में बैठकर भी दूसरों की मूविंग कराता था, दूसरों के काम करता था, बहुत ज़्यादा वो उसका अच्छा इखलाक था, दूसरों की मदद करना, दूसरों की हेल्प करना। तो मैंने सोचा ये भी हो सकता है, और दारुल ईमान वालों को बताया, पता चल गया तो वो ईमेल निकालना चाह रहे थे कि डेथ की इतला देते, मैंने कहा नहीं अभी ना डेथ की इतला देना, मैंने पहले दिन भी उनको ईमेल नहीं निकालने दी, मैंने रात को भी नहीं निकालने दी, फिर रात को, फिर अगले दिन मैंने कहा कि हाँ तुम ईमेल निकाल दो। तो माँ तो इस तरह इंतज़ार करती है, लोग तो सालों इंतज़ार करते हैं ना, तो एक उम्मीद भी थी, लेकिन उसके साथ ही हालात ये कह रहे थे बोल भर के कि हकीकत यही है, और उस हकीकत को कबूल करने के लिए फिर अल्हम्दुलिल्लाह नफल भी पढ़े, दुआ की। और उस मौके पे मैंने रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भी याद किया कि आपकी भी तो औलाद जो थी वो फौत हुई ना, आपके भी बेटा इब्राहिम भी फौत हुआ, याद है ना आप सबको, इसी तरह जो है वो कासिम है ना, फिर बाज रवायात में हमें तैयब का नाम भी मिलता है। फिर इसी तरह मुझे एक सहाबी बहुत, मुझे ये वाक़या बहुत मुतासिर करता है जो आज मैंने ख़ास तौर पे इसको मुंतखब किया है, और वाक़या ये है कि मुआविया बिन कुर्रा, यानी मुआविया तुबनु कुर्रा था, अन अबीही रदियल्लाहु अन, हज़रत मुआविया बिन कुर्रा अपने वालिद मोहतरम से रवायत करते हैं, अन रजुलन अतन नबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, कि एक शख्स नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर हुआ, व मा हुबनुन ला, और उसके साथ उसका बेटा भी था, यानी रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का एक अंदाज़ था कि आप बैठते थे सहाबा आपके इर्द गिर्द झुरमट बना के, जैसे एक सूरज चमकता है और इर्द गिर्द सितारों का झुरमट है, आप बैठा करते सहाबा आपके इर्द गिर्द हमातन गोश हो के बैठते, और उनके बैठना कैसा था, बहुत अदब बहुत एहतराम के साथ, कि सहाबा के बारे में आता है कि अगर आप सहाबा के सर पर परिंदा भी आके बैठ जाता था ना, वो दीवार समझ के आके बाज़ूकात बैठ जाता था, पता नहीं चलता था, इतना अदब और एहतराम से रसूलल्लाह की महफिल में सहाबा बैठा करते थे। सहाबा बैठे हैं, मेरे और आपके बिलव्ड पैगंबर मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मौजूद हैं और उन पर लाखों दुरूद और सलाम, और एक शख्स आता है, और कैसी खूबसूरत मंजर कशी है और कैसी खूबसूरत तस्वीर कशी है कि रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बिलव्ड सहाबा ने अपनी आंख के कैमरे से कैसी अच्छी तस्वीरें बनाई हैं मेरे और आपके लिए, कि एक शख्स हाजिर हुआ और उसके साथ उसका बेटा भी था, और इस शख्स के बारे में आता है कि जब ये रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की महफिल में आया करता था तो वो जो बेटा था ना उसको अपने सामने बिठाता था और उसे खेलता मोहब्बत भी करता और रसूलल्लाह की बातें भी सुनता। तो एक दिन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसे पूछा, फ़क़ाला लहू अतुहिब्बु, कि क्या तुम इससे मोहब्बत करते हो, अतुहिब्बु बहुत ज़्यादा मोहब्बत करते हो, बहुत ज़्यादा मोहब्बत करते हो, मुबालगा है। फ़क़ाल पर उसने कहा, अहब्बकल्लाहु कमा उहिब्बु, उस शख्स ने कहा, ए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अल्लाह ताला आपसे ऐसी मोहब्बत करे जैसी मैं अपने इस बेटे से मोहब्बत करता हूँ, कि मुझे अपने इस बेटे से इतनी मोहब्बत है कि मैं दुआ करता हूँ कि अल्लाह आपसे उतनी मोहब्बत करे। सोचे ज़रा, उस बाप ने अपनी मोहब्बत को बयान किया कि कितनी मोहब्बत करता हूँ। फिर क्या हुआ, फमात, फिर वो लड़का फौत हो गया, फिर वो लड़का मर गया, फ़क़दा, फिर फ़क़दा, जैसे कुरान में जहाँ पे हुदहुद नज़र नहीं आता ना, वहाँ पे सुलेमान अलैहिस्सलाम ने भी ये लफ्ज़ जो है वो बोला है, तो फिर वो लड़का जो था, फिर वो शख्स महफिल में आपको नज़र नहीं आया, गुम हो गया, जैसे जैसे कोई आए बाकायदगी से फिर आना छोड़ दे, और बाज़ कहते हैं कि फिर आपने उस आदमी को ना देखा, फिर आपने उस लड़के को ना देखा, लेकिन ज़्यादातर कि उस आदमी को आपने ना देखा, क्योंकि बेटे का गम, बेटे की याद, उसकी जुदाई का सदमा उसको इतना शदीद था कि उसने मिलना जुलना लोगों से छोड़ दिया, हत्ता कि रसूलल्लाह की महफिल में भी आना जो था वो छोड़ दिया। फिर रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फसाल अन, आपने सहाबा से उसके बारे में सवाल पूछा कि क्या हुआ उस आदमी को जो दर्स में आता था, जो मेरी महफिल में आता था, अब तो नज़र ही नहीं आता। तो फिर लोगों ने जो है वो मतलब बताया रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को उसके बारे में कि उसका बेटा जवान था, बच्चा था या जितना भी बड़ा था, ज़ाहिर छोटा होगा जिसको वो उठा कर लाता था, कंधे पे उठा के लाता था, सामने बिठाता था। तो फिर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, यहाँ तक कि उस आदमी से आपकी मुलाकात हुई, अब हदीस की किताबों में ये नहीं पता चलता कि आप उसके पास गए कि उसको लाया गया। बहरहाल अगला सवाल आपने कहा, फ़क़ाल मा यसुरुक, कौन सी सूरत तुझे ज़्यादा पसंद है, कि पूछा कि तुम्हारा, पूछा कि क्या हुआ, कहा कि बेटा इस तरह फौत हो गया और उसकी जुदाई का सदमा बर्दाश्त नहीं कर पाता, तो पूछा माँ या सुरु, क्या चीज़ तुझे सुरूर देती है, क्या चीज़ तुझे ज़्यादा खुशी देती है कि इस दुनिया की ज़िंदगी में तुम अपने उस बेटे से फ़ायदा हासिल करते। फिर दूसरी बात क्या है कि या तुम्हें अल्लाह ताति बाबम मिन अवाबिल जन्ना इल्ला वजद तोहु इंदहु यस आ यफ्तहुलक, यानी या ये हो कि तुम जन्नत के जिस दरवाजे पर भी जाओ तो तुम अपने बच्चे को पाओ और वो तुम्हारे वास्ते जन्नत का दरवाज़ा खोलने की कोशिश करे। बताओ तुम्हें ये पसंद था कि तुम दुनिया में उससे खेलते मज़े लेते, उसकी जवानी से दिल लिभाते, उसकी जो भी चीज़ है, या तुम जन्नत के जिस दरवाजे पर जाओ अल्लाह तातिया बाबा मिन अवाबिल जन्ना, अवाबिल जन्ना जन्नत के दरवाजों में से जिस भी दरवाजे पे तुम नहीं जाते, इल्ला वजदतहु यहाँ मगर तुम उसको पाते, इंदहु उस दरवाजे के पास, यस आ कि वो सही कर रहा है, वो कोशिश कर रहा है, यफ्तहु लक कि वो तेरे लिए उसको खोल दे और वो तुम्हारे वास्ते जन्नत का दरवाज़ा खोल दे, उसकी कोशिश करे। बताओ, तो इसी हदीस को मैंने उस वक्त याद किया और मैंने कहा कि मेरा बेटा, हमने दोनों ने मिलकर जो है ये बागो बहार, ये फूल, ये अपने बच्चे जो थे इनकी तरबियत की, दोनों ने मिलकर छोटी मोटी नन्नी नन्नी कोशिशें की और इस दिन का हम इंतज़ार कर रहे थे। तो मैंने कहा कि नहीं नहीं ऐ मेरे रब, मैं जो हूँ मैं चाहती हूँ, हम ये चाहते हैं, हम दोनों ये चाहते हैं कि वो हमारे लिए जन्नत का दरवाज़ा खोले और हमारा जो है इस्तकबाल करे। तो मैं जो हूँ मैं बहुत खुश हूँ कि मेरे लिए, हमारे लिए जन्नत का दरवाज़ा जो है वो हमारा बेटा खोलेगा, और मैं हर उस माँ के लिए, हर उस बाप के लिए जो इस तकलीफ़ से गुज़रा है, एक बेटा एक बेटी, दो बेटे, चार पाँच तीन, बास के बहुत ज़्यादा बच्चे दुनिया में फौत हुए हैं, बास के बिल्कुल छोटे छोटे, बास के बड़े, और अगर छोटा सा बच्चा जो है, छोटा बच्चा जिसको उठा सकता है बाप और महफिल में लाता है, उसके लिए ये खुशखबरी है। तो वो बेटा जो 6 फुट का हो गया, जिसके साथ 25 साल, 25.5 साल आपने मैंने लगा दिए, जिनके फौत हो गए जवानी में, क्योंकि मुझे कसरत से अब ऐसे फ़ोन आ रहे हैं कि मेरा 31 साल का बेटा फौत हो गया है रोड एक्सीडेंट में, मैं उनको नहीं जानती, वो मुझे नहीं जानती, और ज़्यादा अब कॉलें इस तरह की आ रही हैं कि हम बहुत दुखी हैं, हम आपसे मिलना चाहते हैं। मैं सोच रही थी ऐसे लोगों को भी इकट्ठा किया जाए कि हम सबका गम मुश्तरका है। किसी ने कहा 21 साल के, किसी ने कहा 22 साल के, किसी ने कहा हमारी तो कमर टूट गई, किसी ने कहा हमें तो शुगर हो गई, किसी ने कहा हम तो हार्ट के पेशेंट हो गए, किसी ने कहा हम तो उस दिन से उठ नहीं सके, हमारी आंखें तो सूखी ही नहीं हैं, यानी ड्राई नहीं हुई, मसलसल आंसू बहा रही हैं, हम आपसे मिलना चाहते हैं कि हम अपने इस गम का मदावा कैसे करें। बाखुदा मेरे पास कोई मरहम तो नहीं है, मेरे पास कोई दवाई तो नहीं है, मेरे पास कोई हिडन राज तो नहीं है। जैसे बाज़ लोग वज़न ज़्यादा होता है फिर एकदम कम कर लेते हैं तो पता करते हैं, पता नहीं कैसे, क्या रेसिपी है इसके पास, मेरे पास कोई ऐसी रेसिपी नहीं है सवाए इसके जो कुरान और हदीस से मिलती है, और कुरान और हदीस से बढ़कर बेहतरीन इलाज और कोई नहीं है। वस्तईनु बिस्सब्री वस्सला, कि मुश्किलात में सब्र और नमाज से मदद लेनी है, और दूसरी चीज़ अल्लाह और अल्लाह की बातें, उसके रसूल की बातें झूठी नहीं हैं, और वो मेरे लिए बिल्कुल उसी तरह मेरे लिए जैसे सहाबा और सहाबियात के लिए हैं। क्योंकि कुरान मजीद में सूरत अल-बकरा में आयत 155 से 157 को अगर देखें तो उसका निचोड़ भी क्या है, वला नबलू वन्नकुम, हम ज़रूर बज़रूर तुम्हारी आजमाइश करेंगे। उसमें नंबर एक खौफ है, हर वक्त एक खौफ लगा रहता है, दूसरी चीज़ जू भूख है, फिर माल जो है उसका नुकसान होना, माल का, बिजनेस का, फिर इंसानों की अमवात जिसमें एक्सीडेंट भी आते हैं बीमारियों के ज़रिए या जैसे भी, और फिर समारात, और कहा कि सब्र करने वालों को खुशखबरी दीजिए, बशीर सबरीन, बग़ैर सब्र के नहीं, और सब्र करने वालों को अल्लाह बग़ैर हिसाब के जो है वो जन्नत देता है। और फिर क्या कहा कि ऐसी खबर सुनने पर वो इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन पढ़ते हैं, उनके लिए फिर 3 खुशखबरियाँ हैं, सलावात व रहमा, और कहा वَأُولَئِكَ هُمُ الْمُهْتَدُونَ, और ऐसे ही लोग जो हैं अल्लाह ताला कहते हैं कि ये लोग जो हैं ये सही रास्ते पर हैं जो ऐसे करेंगे। तो मुझे ऐसे लगता है जैसे फरिश्ते मेरे लिए इन आयात की तिलावत कर रहे हैं, मुझे ऐसे लगता है मैंने अब तक की ज़िंदगी में जो वाक़यात पढ़े थे, जो हदीस पढ़ी थी, एक के बाद एक मेरे सामने जैसे एक मूवी की तरह जो है ना वो मेरे आगे चलती है, मेरे पीछे चलती है, जैसे मैं अल्लाह की ब्लेसिंग में हूँ और अल्लाह के ख़ास करम में हूँ, और मुझे जैसे अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त जो है ना वो तसल्ली देता है, सहारा देता है, और मेरे साथ है मेरा रब हर कदम पर, और मैं अल्लाह की इस रहमत को महसूस करती हूँ। और फिर मैंने ये याद भी किया उस वक्त कि इन्नमा सब्रु इंदा सदमतिल उला, कि सब्र सदमे की पहली चोट पर है, वक्त गुजरने के बाद नहीं, ऐसा नहीं। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी बेटी ज़ैनब को, जब उनका बेटा मरने के करीब था तो बार बार अपने बाप को बुला रही थी, उस वक्त आपने पैगाम भेजा इन्ना लिल्लाहि मा अखज व लहू मा अता व कुल्लुन इंदहू बिअजलिन मुसम्मा, कि जो दिया वो भी अल्लाह ही का था, जो लिया वो भी अल्लाह ही का है, और हर चीज़ का हर चीज़ की अल्लाह के यहाँ एक मुद्दत मुकर्रर है। तुम्हारे बेटे की अब मौत का वक्त है, मेरा आना उसको पीछे नहीं कर सकता, वो होकर रहेगी। ग़ज़वा उहद हुई तो सहाबा के मुख्तलिफ रवैये हो गए, कुछ ने मायूस होकर जंग में हिस्सा लेना छोड़ दिया, कुछ जो थे उन्होंने कहा उठो और उस मिशन पर जान दे दो जिस पर जो है, क्योंकि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शहादत की खबर मशहूर हो चुकी थी कि जिस पर रसूलुल्लाह और सहाबा ने जो है वो जान दी, और हर तरफ तलवारों की झंकार थी, हर तरफ जंग जोरों पर थी। उसमें अंस बिन नदर जैसे सहाबी भी थे जो कह रहे थे उहद के दामन से मुझे जन्नत की खुशबू आ रही है। तो जन्नत की खुशबू, रब की रज़ा, एन मुश्किल में जो है वो अल्लाह के पसंदीदा बंदे उससे जो है वो सहारा लिया करते हैं। तो ये जो मतलब ये हदीस के मेरे लिए, मेरे शोहर जाहिद के लिए, हर उस बहन और भाई के लिए, हर उस बेटी और बेटे के लिए, हर उस मुसलमान के लिए, मोमिन मोमिन मोमिनात के लिए जो इस सदमे से, इस तकलीफ़ से गुज़रे हैं, उनके लिए, उनकी औलाद जो है, जिनका अगर एक गया है वो तो एक दरवाज़ा खोलेगा, और जिनके ज़्यादा गए हैं वो सभी मिलकर वेलकम करेंगे अपनी औलाद को। सोचिए वो कितने खुशकिस्मत हैं। तो ये बात बहुत अहम है। फिर मैंने हज़रत उम्मे सुलेम को बहुत याद किया। मेरी मैंने इस पर एक बाकायदा एक मेरा लेक्चर भी वेबसाइट पर मौजूद है, ब्राइट स्टार के नाम से, कुछ साहबियात हज़रत खदीजा, हज़रत उम्मे सुलेम। तो मुझे इनका किरदार, अबू तलहा अंसारी का किरदार भी बहुत पसंद है। मैंने उनको याद किया कि उन्होंने तो अपने बेटे को खुद अपने हाथ से नहलाया था। तो अगर मेरा बेटा भी होता छोटा और ऐसा हालत होती कि मैं उसको नहला सकती, तो मैं ज़रूर अपने हाथ से नहलाती अपने, क्योंकि मैंने अपनी माँ को अपने हाथ से नहलाया, मैंने अपनी दादी को अपने हाथ से नहलाया, मैंने अपनी फूफो को अपने हाथ से अल्हम्दुलिल्लाह नहलाया। और कभी मेरा कोई दोस्त या स्टूडेंट जिसकी जब जब कभी कहीं मुझे इत्तला मिली, मैंने उसको भी अपने हाथ से नहलाया, क्योंकि यही मोहब्बतें हैं, यही रफाकतें हैं, और यही उनके आखिरी हकूक़ हैं जो जाते जाते हम उनके अदा कर सकते हैं। तो जो भी जैसे मैंने शायद कहा, मैंने अपनी बड़ी बहन को भी, तो बहरहाल तो वो चीज़ जो थी वो तो हो नहीं सकती थी, वो जवान था तो उसको तो मैं नहीं नहला सकती थी वैसे भी। तो बहरहाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बेटे इब्राहिम, जिनकी वफ़ात पर आपने कहा था तदमाउल ऐन, के आँख जो है वो आंसू बहाती है, या ज़नुल क़ल्ब, दिल मेरा गमज़दा है, वला नकूल, और हम वही कहते हैं जो हमारे रब को पसंद है। तो मैंने इस बात को भी अल्हम्दुलिल्लाह याद किया। अच्छा, मेरे बेटे की वफ़ात के फ़वाद क्या हैं, मैंने इस तरह सोचना शुरू किया, और ये मैं आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ। मेरे अहमद बेटे की डेथ के जो है फ़वाद को इंग्लिश में क्या कहते हैं, बेनिफिट्स ऑफ अहमद्स डेथ फॉर मी एंड फॉर माई हस्बैंड एंड फॉर माई होर फैमिली। मैं ये नहीं सोच रही कि उसके चले जाने के नुकसान क्या हैं, क्योंकि कुरान ने, हदीस ने नुकसान नहीं गिनवाए। तो जिस तरह कुरान हमें सुचवाता है, जिस तरह सहाबा साहबियात का उस वह, मैं बिल्कुल उसी तरह सोचती हूँ, मैं उससे हटकर सोचना भी नहीं चाहती। तो अहमद की वफात के जो फवायद मेरे सामने आए, उसमें सबसे बड़ा फ़ायदा मेरे सामने ये आया कि मुझे जन्नतुल फिरदौस जो है ना, उसका टिकट मेरे हाथ में होने के लिए किसी हद तक मुझे लगा कि अगर मैं इस इम्तहान पे पूरा उतरती हूँ तो मेरे लिए यकीन दहानी है, और ये मेरे लिए खुशी मनाने की बात है। बस खुशियाँ मनाओ अपने सौदे पर जो तुमने अपने रब से चुका लिया। तो पहली चीज़ जो मेरे सामने आई वो क्या है कि जन्नतुल फिरदौस कमाने का ये जो है बहुत, यानी मैंने कभी तसव्वुर भी नहीं किया था। मैं जब जब किसी की ऐसी डेथ की खबर सुनती थी, ज़रूर पहुँचने की कोशिश करती थी, उनके लिए दुआ करती थी, उनको प्यार करती थी, उनको आयात और हदीस सुनाती थी, और थोड़ा संभल संभल के भी सुनाती थी कि इनके जब बहुत गम में होता है उसको ये लगता है कि तुम क्या जानो जो मेरी चोट है, जो मेरी तकलीफ़ है, तुम लोग क्या जानो, जो आमतौर पर दर्स देते हैं और जो तकरीर करते हैं, जो बात करते हैं, ये लोग क्या जाने। तो थोड़ा संभल कर, थोड़ा डर कर, लेकिन कोशिश करती थी कि मैं उनके दिल को जो है वो, उनको ढारस जो है वो दे सकूं। तो पहली चीज़ मुझे ये, दूसरी चीज़ मुझे ये पता चली कि मेरा रब के, रब अजीम, रब करीम, अरहमुर रहीमीन के करीब होने का मौका मुझे मिला। मैं और ज़्यादा मैंने अल्लाह की कुर्बत महसूस करनी शुरू कर दी। उस दिन से जब से मुझे ये चोट लगी है तो ऐसे लगता है कि मैं और ज़्यादा अपने रब के जो है वो करीब हो गई हूँ, क्योंकि अल्लाह ताला कहते हैं कि मैं अपने प्यारों को ज़्यादा आज़माता हूँ, पहले नबियों को, फिर उसके बाद ईमान के लिहाज से जिनको मैं जो है वो अच्छे दर्जे पे पाता हूँ तो उनको आजमाता हूँ। फिर तीसरी चीज़ जो है जो मेरे सामने आई वो ये थी कि सुपुर्दगी, कि इन्ना सलाती व नुसुकी व महयाया व ममाती लिल्लाहि रब्बिल आलमीन, मेरा सब कुछ अल्लाह रब्बुल आलमीन का है, अल्लाह का है, तो मेरी ज़िंदगी के फैसले, मुझे कुछ देना, मुझे महरूम कर देना, मेरा अल्लाह इज़ वॉचिंग मी, अल्लाह तो देख रहा है कि इसका दिल कितना कट रहा है, इसका ये कितना तड़प रही है, ये कितनी उदास है। आमतौर पे बच्चे को किसी जगह आप यूँ कहीं ख़तरनाक मुहिम पर रवाना करते हैं तो आप उसको मोहब्बतें देकर बलाएं देकर रुख्सत करते हैं, और जब रूटीन की एक ज़िंदगी हो तो बाज़ों का हम, हालांकि अक्सर जब वो आता था और जाता था मेरे पास से, मैं आयतुल कुर्सी पढ़ती थी, दुआ पढ़ती थी और कहती थी अल्लाह तेरी हिफाजत में, अल्लाह तेरे हिफ्ज़ो ईमान में, हर माँ ऐसे करती है ना, तो बाज़ों का ऐसे लगता है कि अच्छा आखिरी दफ़ा मैंने दिल भर के उसको देखा भी नहीं था। आप फिर बहुत सी बातें इस तरह से सोचते हैं, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह तो मुझे उस वक्त जो है वो क्या महसूस हुआ, मैं क्या बात कह रही थी अभी, हाँ सुपुर्दगी, अल्लाह के फैसले पर अमन्ना व सदक ना कहना, समेना व पाना, कि मुझे इसकी अमली तस्वीर बनना है। और किस तरह, मुझे ये नहीं कहना कि उसने नई गाड़ी क्यों ली थी, वो क्यों चला गया था, वो मेरे पास क्यों नहीं था, काश के वो गाड़ी ना लेता, काश के उसने ये सफ़र ना किया होता, काश के वो ऐसे ना करता, काश के वो वैसे ना करता। जैसे प्रेग्नेंट हो और प्रेगनेंसी जब ज़ाया हो जाती है तो ऐसे मौके पे भी लोग ये कहते हैं कि मैंने वज़न ना उठाया होता, मैंने एक्सरसाइज ना ज़्यादा की होती, मैं फ़लाँ डॉक्टर के पास ना जाती, मैं फ़लाँ ये काम कर लेती, है ना। तो लॉ लॉ हम कहते हैं अगर, तो हदीस में है कि अगर मगर का चक्कर जो है शैतान का दरवाज़ा खोलता है, तो आपने कभी कोई तकदीर जो है ना उसके फैसलों को कबूल करना है, कभी ये नहीं कहना। तो अल्हम्दुलिल्लाह मैं अल्लाह का लाख लाख दफ़ा शुक्र अदा करती हूँ कि मैंने एक दफ़ा भी लॉ नहीं कहा, अल्हम्दुलिल्लाह। और जितने भी लोग मेरे पास ताज़ियत के लिए आए, और ढेरों फ़ोन, और बहुत से ऐसे फ़ोन जैसे हाई स्कूल में या मैं बीए में थी या मैं मास्टर कर रही थी या फिर जमीयत की ज़िंदगी, जब बहुत से मेरे दोस्त अहबाब थे, शूरा वर्कर ये वो, तो बहुत से ऐसे लोगों के, फिर बहरीन से, हत्ता कि मेरी बेटा 6-7 साल का था जब हम बहरीन से यहाँ आ गए थे, तो हाँ आठवें साल में था जब हम बहरीन से अमेरिका आए थे, उसके 3 टीचर्स का फ़ोन आया, कहाँ से उनको पता चला, मेरा तो अब उनसे कोई रابطہ नहीं था, दुआएं लिख रहे हैं, बात कर रहे हैं, उसकी यादों को ताज़ा कर रहे हैं। तो जगह जगह से मेरे पास जो है वो फ़ोन आए हैं मुझसे बात करने के लिए, और मैं नहीं चाहती कि कोई भी इस टॉपिक पर, यानी मैं चाहती हूँ कि अमल का मैंने भी ये असूल लिया और मुझे इसका बहुत फ़ायदा हुआ, और मैं आपके साथ ये शेयर करना चाहती हूँ कि कभी भी किसी के यहाँ कोई डेथ हो जाए तो इस तरह के सवाल ना पूछा करें कि जिससे फिर जो है वो लॉ का दरवाज़ा खुलता है कि क्या हुआ था, क्या गाड़ी तेज़ थी, वक्त कौन सा था, साथ कौन था, क्या वो ड्राइविंग सीट पर बैठा हुआ था, गाड़ी कैसे, आग कैसे लगी थी, क्या हुआ था, यानी इस तरह की। और एक बात तो ये कि वैसे उस माँ के लिए बहुत, बाप के लिए जो घर वाले थे उनके लिए बहुत दुख की बात होती है ये कि वो एक चीज़ को बार बार रिपीट करे। दूसरी बात ये होती है कि इस ऐसी जो यहाँ पे जब हम आते हैं ना, इस जगह पे जो भी मैं थोड़े से जगह का जिक्र कर रही हूँ, ऐसे में जैसे वो पिछले दिनों 2 बच्चे जो थे वो तालाब में डूब कर मरे, ऐसी ऐसी लोगों ने बातें की कि मेरा दिल जख्मी था, उस वक्त मैं सदमे से गुजरी नहीं थी, बाप को पता ही नहीं था, माँ को पता ही नहीं था, फलां था ये था। और अब भी अगर, यानी ऐसे मौक़ों पे जब भी हम ऐसी बातें करें तो अल्लाह से हम सबको डरना चाहिए, क्योंकि अल्लाह की लाठी बड़ी बेवाज़ है, हमें डरना चाहिए और अच्छी बातें करें, और कोई ऐसी बात ना करें कि जो जिनके घर मुसीबत आई हुई है उनकी दुख हो, उनको तकलीफ़ हो। और अल्हम्दुलिल्लाह आप लोग नहीं कर रहे, बहसियत मजमूई देखें कि आप सब लोग मेरे दुख में, मेरे गम में, मेरे शोहर के गम और दुख में बहुत अच्छे से मोहब्बत से शरीक है, और मैं आप सबकी बहुत मशकूर हूँ इस पर ज़ाहिर भी। मैं सोच रही थी मेरे पास अल्फाज नहीं है कि मैं अपने बहन भाइयों का, दुनिया के कोने कोने से जो लोग मुझसे बात करें, कैसे शुक्र अदा करूँ कि अल्लाह तूने इतनी मोहब्बत दी, उसके इतने रंग दिए। मुझे तो वो आयत भी ज़िंदा होती हुई नज़र आई और हदीस भी कि अल्लाह जिससे मोहब्बत करता है, फिर जिब्रील अलैहिस्सलाम से कहता है मैं इससे मोहब्बत करता हूँ, जिब्रील अलैहिस्सलाम अल्लाह की मोहब्बत को दूसरे जो फरिश्ते हैं उनमें नाजिल करते हैं, फिर ज़मीन पर। मुझे ऐसे लगता है हर शख्स मोहब्बत कर रहा है, प्यार करना चाहता है। तो वो प्यार मोहब्बत में बात करता है, लेकिन कभी कभी प्यार मोहब्बत में हम इस तरह से कर जाते हैं कि थोड़ा गलत हो जाता है। एक बात मुझे और यानी थोड़ी सी हटकर है लेकिन कहना चाहती हूँ, ऐसे मौके पे हम गले ना मिला करें। वो एक शख्स, उसको होश नहीं होती, उसको तो ये भी नहीं बाज़ूकात नज़र आ रहा होता कौन मुझसे मिल रहा है और नहीं मिल रहा। अब सोचें कि एक बंदे से कितने लोग मिलेंगे ना, इल्ला ये कि कोई बहुत करीब का हो। मतलब मैं इससे गुजर रही हूँ ना, मैं ये नहीं कह रही अल्हम्दुलिल्लाह मुझ में हिम्मत है ताकत है मैं मिल लेती हूँ मुझे मुश्किल नहीं है, लेकिन जिसके ऊपर ये गुजर रही होती है ना, वो इतनी बड़ी तादाद में लोगों से गले नहीं मिल पाता, उसके लिए मुश्किल होता है। तो थोड़ा यानी जैसे कुछ चीज़ें प्रैक्टिकल हैं कुछ प्रैक्टिकल नहीं है, तो मुझे और आपको इस पर भी गौर करना है, सोचना है। अच्छा बहरहाल, तो मैंने और भी बहुत सी बातें हैं, तो मैंने मुझे उसके फ़वाद में ये बातें लगी। एक मुझे ये चीज़ लगी कि मेरे लिए बैतुल हम की तामीर शुरू होगी, मेरे लिए और मेरे शौहर के लिए। और मैं तो समझती हूँ कि बहुत बड़ा बैतुल हम्द बना होगा, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने बनाया होगा, लेकिन ज़िंदगी के आखिरी सांस तक मुझे जो है शुक्र करना है ना, कि कहीं इस्तकामत में लर्जिश ना आ जाए। शुरू तो हो गया बनना, लेकिन परमिट छिन ना जाए, कहीं इजाज़तनामे से मेरा वो महल ख़राब ना हो जाए, कहीं उसकी ऊंचाई में कमी ना आ जाए, कहीं उसके हुसन में कमी ना आ जाए। और वो बैतुल हम डिपेंड करता है कितना खूबसूरत होगा, कितना बड़ा होगा, कितना बेहतरीन होगा, सोने हीरे जवाहरात उसमें जड़े होंगे, नहरें बह रही होंगी, और सारी चीज़ें डिपेंड करता है मैं और मेरा शौहर सब्र कितना और किस कदर और कब तक करते हैं। शुरू में तो कर लिया, बाज़ औक़ात लोग शुरू में नहीं कर पाते, बाज़ औक़ात शुरू में कर लेते हैं दरमियान में छोड़ देते हैं, बाज़ औक़ात आखिर में छोड़ देते हैं। तो यानी डेथ हुई, डेथ के दिन से लेकर मुझे और जाहिद को ज़िंदगी के आखिरी सांस तक, तो मैं अपने आप से सोच रही थी बैतुल हम्द की तामीर शुरू हो गई है, महल बहुत बड़ा बनेगा। छोटे बच्चे जब फौत होते हैं ना, उस पर तो हम उसकी मगफरत की दुआ नहीं करते, उस पर हम वालदैन के लिए सब्र की दुआ करते हैं। अब मेरा तो जवान बेटा फौत हुआ है, तो बच्चे के भी मगफरत की मुझे दुआ करनी है, और इसीलिए उसकी डेथ के दिन से उस घड़ी से लेकर अब तक मैं मसलसल आपसे दरख्वास्त करती हूँ कि मेरे बेटे की मगफरत को याद रखें, मेरे बेटे की मगफरत के लिए दुआ करें, मेरे और जाहिद के लिए मगफरत की दुआ करें। उसकी तरबियत में, उसकी परवरिश में वालदैन है, लेकिन इंसान होने के नाते अगर कोई कमी बेशी हो गई हमारी किसी भी चीज़ में, हमारा रब हमें माफ़ कर दे, और हमारा रब जिसने 100 कत्ल किए थे उसने तो उसको भी माफ़ कर दिया था, जिसने सारी ज़िंदगी गुनाहों में गुजारी थी एक कुत्ते को पानी पिलाने पर उसने उसको भी माफ़ कर दिया था। रब तो बहुत गफूर और रहीम है, जिसने वो 70 साल गुनाहों की ज़िंदगी गुजारी थी रब ने तो उसको भी माफ़ कर दिया था। तो मेरा रब मेरे बेटे को और ख़ास तौर पर मुझे और जाहिद को, क्योंकि इस वक्त हम जो है वो इम्तहान में से गुजरे और हमारी फैमिली। फिर मैंने जो है इसके साथ ही मेरा दिल बहुत नरम हो गया है, यानी और ज़्यादा, पहले भी नरम था अब मैं सॉफ्ट हार्ट हूँ और ज़्यादा, क्योंकि अब मैं किसी वक्त भी मैं रो लेती हूँ, क्योंकि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऐसी आँख से पनाह मांगी, आऊज़ु बिका मिन ऐनिन ला तदमा, ऐसी आँख जिससे आंसू नहीं बहता, तो सख्त दिल रोते नहीं है ना। तो डेथ और ऐसे सदमे जो है ना इंसान के दिल को नरम कर देते हैं, और उस पहले ही अल्हम्दुलिल्लाह मैं अपने दिल को बहुत नरम पाती हूँ, लेकिन डेथ के बाद से मेरा दिल और ज़्यादा नरम। कि डेथ के बेनिफिट्स क्या हैं, फ़वाद क्या हैं, और उसमें यह कि मुझे जो है वो बैतुल हम्द की तामीर जो है मैं चाहती हूँ कि मेरी मुकम्मल हो और ख़ूबसूरत पैलेस हमारे लिए बने। फिर इसके साथ जैसे नरम दिल हो गया, फिर ये कि आप मर्सीफुल बनते हैं, खुद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया इरहम मन फिल अर्दी यरहमुका मन फिस समा, आप ज़मीन वालों पर रहम करो आसमान वाला तुम पर रहम करेगा। तो मुझे जैसे पहले भी बहुत फीलिंग लगती थी, एहसास था, लेकिन अब मुझे और एहसास होता है कि ऐसे लोगों के पास बैठूँ, उनसे बात करूँ, उनको तसल्ली दूँ, उनके दुख में शरीक हूँ। अच्छा इसके साथ ही इस मौके पर जो है मैंने अपने कुछ गोल बनाए हैं, बात को अब मुख्तसर और करती हूँ, और उसमें से पहला मेरा गोल ये है कि अल्लाहुम्मा इन्ना नसअलू कल जन्नतुल फिरदौस, कि मुझे जन्नतुल फिरदौस चाहिए, और मैंने नसअलू का सीगा इस्तेमाल किया है, यानी हम सबको। तो पहला मेरा गोल ये है कि जब जन्नतुल फिरदौस चाहिए तो मुझे कोशिश करनी होगी कि मैं ज़िंदगी के हर इम्तहान में हाईएस्ट मार्क्स लूँ, टॉप करूँ। आपको पता है ना 90% से ऊपर, 95% से ऊपर, यानी 4 में से 4 वो जो लेते हैं GPA, तो उसके लिए फिर बहुत ज़्यादा स्ट्रगल की ज़रूरत होती है। तो इसलिए ये जो मेरा पेपर है बहुत सख्त है, बहुत मुश्किल है, लेकिन मैं हाईएस्ट मार्क्स चाहती हूँ। क्यों? मैं जन्नतुल फिरदौस चाहती हूँ। दूसरी चीज़ अल्लाहुम्मग़फिर लना, अल्लाहुम्मग़फिर ली वरहमहु, अल्लाहुम्मग़फिर ली वग़फ़िर हो, मेरी बख्शिश कर उसकी भी, हमारी बख्शिश कर और तमाम मोमिनात की। तो बख्शिश की दुआ मेरा दूसरा गोल है कि अपने लिए और मरने वालों के लिए और ज़िंदा के लिए सबकी मांगनी है। तीसरी चीज़ जो है अनअमता अलैहिम, उन लोगों के उनकी रिफाकत अता करना जो सूरत निसा में अल्लाह ताला ने फरमाया कि अम्बिया, सिद्दीकीन, शोहदा और सालिहीन, फिर कहा हसुना उलाइका रफीका, और कितनी अच्छी है ये रिफाकत। और रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था अल्लाहुम्मा रफीकुल आला। नमाज के बाद फिर इंशाल्लाह बैठते हैं। इस पे बात हो रही थी कि मेरे यानी मेरे बेटे की वफ़ात के बाद अब मेरी ज़िंदगी का मकसद या अंदाज़ क्या है या मेरे गोल्स क्या हैं। तो उसमें हम इस गोल पे बात कर रहे थे कि मुझे जो है वो जन्नतुल फिरदौस चाहिए, और जन्नतुल फिरदौस में अम्बिया, सिद्दीकीन, शुदा और सालहीन का साथ चाहिए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। जैसे रबिया बिन काब ने कहा था ना कि मुझे जन्नत चाहिए और जन्नत में रसूलल्लाह का साथ चाहिए, मुराफ़क़तु काफिल जन्ना, कि मुझे जन्नत में आपका साथ चाहिए। तो यही इस वक्त जो है मेरी ज़िंदगी का भी यही गोल है। फिर इसके बाद जो है मुझे मैंने एक और चीज़ अपने लिए अमल के असूल के तौर पे अब ली है कि नो एक्सक्यूज़। जैसे हम लोग बहुत से एक्सक्यूज़ करते हैं, जैसे मूसा अलैहिस्सलाम को जब अल्लाह ताला ने फ़िरौन के दरबार में भेजा था कि इज़हब इला फ़िरऔना इन्नहु तगा, तो उन्होंने कोई एक्सक्यूज़ नहीं किया था बल्कि रब्बी इशरह ली सदरी पढ़ते हुए फ़िरौन के दरबार की तरफ चल पड़े थे। तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने जो जो मुझसे चाहा है, प्यारे रसूल की जो सुन्नत है, मुझे उसको ज़िंदा करना है। मसलन जैसे सोग 3 दिन है, यानी ताज़ियत या मैयत के अदाब के बाद बस 3 दिन है सोग ना। तो रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ौजा मोहतरमा हज़रत उम्मे हबीबा बिनत सुफियान कहती हैं कि जब इनके वालिद अबू सुफियान फौत हुए तो 3 दिन के बाद उन्होंने खुशबू परफ्यूम वगैरह मंगवाया, उसको अपने चेहरे पर, अपने बाजुओं पर मला, और एक जगह मिलता है तेल वगैरह लगाया, यानी ताकि वो फ़्रेश लगें। और उन्होंने फरमाया कि रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हुक्म है कि ईमानदार औरत के लिए 3 दिन से ज़्यादा किसी का सोग मनाना जायज़ नहीं, सवाए शौहर के किसकी मौत पर 4 महीने और 10 दिन तक बीवी को सोग मनाना चाहिए। तो अल्हम्दुलिल्लाह मैंने भी अपने प्यारे रसूल की इस हदीस को जो है वो ज़िंदा किया है कि बहुत दिनों से मैंने कानों में कुछ नहीं पहना था, लेकिन 3 दिन के बाद अल्हम्दुलिल्लाह जैसे अब लोग आ रहे हैं मैंने ये कांटे बुंदे भी पहन लिए हैं। अक्सर पहने होते थे, कभी उतारते हैं तो फिर वो कितना अरसा पहनते नहीं, तो नहीं पहनते, ये पहने हैं। आज जैसे मैं लिपस्टिक लगा कर आई हूँ, मैं खुशबू भी लगा रही हूँ, और इसका मकसद क्या है, मेरे दिल की कैफियत तो आप सब समझते हैं कि इस वक्त एक माँ का जिसका जवान बेटा फौत है उसकी दिल की कैफियत क्या होगी। लेकिन इस वक्त लिपस्टिक लगाना, सही मुनासिब कपड़े पहनना, ये क्या है कि 3 दिन से ज़्यादा सोग औरत के लिए या मर्द के लिए जायज़ नहीं है, किसी मुसलमान के लिए भी। तो फिर हम कैसे मुसलमान हैं, हम हर साल बरसी मनाते हैं, हम बहुत अरसा सोग मनाते हैं, हम पहली ईद नहीं मनाते। तो ये इस्लाम में इसकी कोई रियायत नहीं है, कोई गुंजाइश नहीं है, और ये पसंदीदा नहीं है। मुझे वो करना है जो मेरे रब को पसंद है और जो प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत है, दिल चाहे या ना चाहे। दिल से नहीं पूछना कि दिल तू क्या कहता है, तू क्या चाहता है, जिसमें मेरे रब की खुशी नहीं उसमें फिर मेरी भी खुशी नहीं। और एक बुज़ुर्ग थे तो उनसे लोगों ने कहा कि आप बारिश की दुआ करें, तो उन्होंने कहा कि जो है वो बारिश के लिए कह था, दुआओं की दरख्वास्त कर रहे थे, तो उन्होंने कहा कि अस्तगफार एक तो तरफ तो उन्होंने किया, और दूसरा उन्होंने कहा कि जैसे गुनाहों की जब कसरत होती है ना तो फिर बारिश रुक जाती है, फिर फसल नहीं होती, फिर औलाद नहीं होती, अल्लाह रिज़्क को रोक देता है, ज़मीन सोना नहीं उगलती। तो उन्होंने कहा कि हमें सबको अस्तगफार करना चाहिए। फिर उन बुज़ुर्ग ने सोचा कि कहीं मेरे गुनाहों की वजह से तो नहीं अल्लाह ताला ने इस बस्ती पे बारिश रोक दी। तो उन्होंने कहते हैं कि उन्होंने उन लोगों को तो ये मशवरा दिया कि अस्तगफार करें, नेकी का काम करना शुरू करें, और ख़ुद उस बस्ती से चल पड़े। लोगों ने पूछा आप कहाँ, कहा कि कहीं मैं ही तो वो गुनाहगार नहीं हूँ कि मेरे गुनाहों की वजह से अल्लाह ने रहमत बस्ती पर रहमत की बारिश जो है वो रोक दिया। तो नेक लोग ऐसे होते हैं, वो दूसरों के बारे में नहीं सोचते, वो अपने बारे में सोचते हैं कि कहीं वो मैं ही तो नहीं हूँ। तो बहरहाल एक तो ये वाली बात, और दूसरा इस मौके पर जो है वो मुश्किलात से निकलने का रास्ता और तरीका क्या है, यानी ज़ाहिर है मैं बहुत मुश्किल में हूँ, यकीनन, और आप में से हर शख्स मेरी मदद करना चाहता है, जितने फ़ोन, जितनी कॉलेज, जितनी बहनें, हम आपकी क्या मदद कर सकते हैं। और बहुत से बच्चों ने, बेटों ने ख़ास तौर पर, दोस्तों के बेटों ने, अहमद के दोस्त जो हैं वो मेरे पास आए हैं, टैक्स करते हैं, फ़ोन करते हैं कि आप हमें अपना बेटा समझें, अहमद को आप जैसे काम कहती थी ना वैसे ही काम करें। और उनकी पेशकश जो है ना, ऐसी खूबसूरत पेशकश जो मैं तो, ऐसा दिल नरम उदास भी होता है, रोना भी आता है और फिर रब पर प्यार भी आता है कि कितने लोगों के दिल में मेरी और मेरी फैमिली की और मेरे बच्चे की मोहब्बत डाल दी। और उसके दोस्त कहते हैं कि अहमद दारुल ईमान इंस्टीट्यूट से बहुत एसोसिएशन रखता था। हमारे दारुल ईमान के जो इंटरनेट के काम हैं, आईटी के काम हैं, वो करता था और स्टार्ट उसी ने लिया था। लेक्चर मेरे जो है एडिट करके तो वेबसाइट पर डालता था, और इसके पेजेस बनाना, काम करना, और कोई भी काम हमारा, यानी ऑफिस का, ऑफिस लेना है, कोई भी जो मर्दों के करने के काम होते हैं, वो सारे काम करता था। तो उसके दोस्तों को भी सबको पता था कि दारुल ईमान एक इंस्टीट्यूट है और जिसमें वो ये काम करता है। तो उसके एक दोस्त का मुझे कल परसों एक टैक्स आया, दो तीन चार दिन हो गए कि आंटी हमने, हम दोस्तों ने मिलकर अहमद के लिए, सदका जारिया के लिए फ़ंड रेज करना शुरू किया है, हमारा गोल $25,000 है और हम वो पैसे जो हैं वो दारुल ईमान इंस्टीट्यूट को देंगे। वो उसके ऊपर, वो मैं खोलना चाह रही थी कि मैं आपको सुनाऊं कि उन दोस्तों ने क्या लिखा है। और मैं सोच रही थी, मैं अक्सर अहमद से कहती थी कि अहमद मैं ऐसे नहीं, ऐसे चाहती हूँ बेटा, आप ऐसे किया, यानी मामा मामा हम ठीक हैं, मामा आप लोग जैसे सोचते हैं ऐसे नहीं है, मतलब जैसे बच्चे यहाँ के बात करते हैं तो वो भी ऐसे ही कहता था, मामा मेरे दोस्त भी बहुत अच्छे हैं। और हकीकत यह है कि मेरा बेटा जो कहता था, उसके दोस्तों ने अमली इसका जो है वो सबूत दिया है कि नेकी की तरफ जो है वो कदम उठाना। और मैं सोचती हूँ कि बाज़ औक़ात हम ज़ाहिर की आँख से देखते हैं, बातिन की आँख से, यानी अल्लाह ताला उस बंदे के लिए और बाकियों के लिए क्या मामला करता है, गैब का इलम जो है वो कोई नहीं जानता। तो उनके दोस्तों ने वो जो मुझे भेजा पेज, मैं वो आपके साथ इस वक्त शेयर करना चाहती हूँ और आपसे और अपने आप से ये सवाल पूछती हूँ कि मेरा और आपका सदका जारिया कौन बनेगा। जैसे अबूबकर सिद्दीक रदी अल्लाह अन्हु के बारे में आता है कि उनका सदका जारिया कौन था। उनका सदका जारिया अशरा मुबशरा में से 10 लोगों में से 6 ऐसे थे जो उनकी कोशिशों से मुसलमान हुए थे, जिनको दुनिया में जन्नत की बशारत मिली। उस्मान गनी रदी अल्लाह अन्हु, अब्दुर्रहमान बिन औफ रदी अल्लाह अन्हु, तलहा बिन अबैदुल्ला रदी अल्लाह अन्हु, ज़ुबैर बिन अवाम रदी अल्लाह अन्हु, साद बिन अबी वक़ास, फ़ातह कादसिया रदी अल्लाह अन्हु और अबू उबैदा बिन जराह रदी अल्लाह अन्हु। 10 में से 6 अकेले उनकी कोशिशों से मुसलमान हुए थे। अब इस वक्त यहाँ पे मैं उस दिन से ये भी सोचती हूँ, मेरे बेटे का सदका जारिया क्या है, कौन सी नेकियाँ, मा कद्दमत व अखारत, क्या उसने नेकियाँ आगे भेजी, क्या उसने पीछे छोड़ी, और उसका जो सदका जारिया है उसमें एज ए पेरेंट्स हम क्या रोल प्ले कर सकते हैं, उसके दोस्त, आप, हम सब, क्योंकि दुख दर्द में जब इंसान शिरकत करता है तो सोचता है कि कैसे उस काम को जो आगे बढ़ाए। और एट दी सेम टाइम अब मुझे ये फिक्र हो रही है कि मेरा सदका जारिया क्या है। मैं अपने बच्चों को चलते फिरते कहती थी, अगर मुझे कुछ हो गया तो आप लोगों ने जो है ना दारुल ईमान को आपने संभालना है, दारुल ईमान को यूथ की ज़रूरत है, आपकी ज़रूरत है ना। मुझे नहीं पता था कि मेरे बेटे की डेथ, यानी किसी को भी नहीं पता ना कि कब किसकी डेथ हो जाएगी, कि मेरे बेटे की डेथ इस तरह से जवानी में हो जाएगी है। तो उसके दोस्तों ने जो है वो एक पेज बनाया है फेसबुक पे, गो फंड मी, इसमें उन्होंने लिखा है, जवाद मेहर हैं और उसके साथ और भी उसके दोस्त हैं, उन्होंने लिखा है कि कुछ ग्रुप है दोस्तों का कि अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन, मोहम्मद जाहिद, ऑन बिहाफ ऑफ हिज फ्रेंड्स जवाद मेहर एंड समरा अमीन, वी रिक्वेस्ट इफ़ पॉसिबल टू डोनेट एनी अमाउंट फॉर सदका जारिया चैरिटी ऑन बिहाफ ऑफ मोहम्मद अहमद जाहिद। फिर उसने जो है वो लिखा है आगे कि एज़ फ्रेंड्स वी आस्क इफ पॉसिबल वी वुड काइंडली लाइक यू टू डोनेट वेयर वी बिलीव मोहम्मद जाहिद वुड लव, दैट इज़ एट दारुल ईमान इंस्टीट्यूट विच इज़ रन बाय हिज डियर मदर दैट टीचिज इस्लामिक एंड कुरानिक स्टडीज़ टू वुमेन ऑल अक्रॉस द वर्ल्ड, द मनी डोनेटेड विल बी गिवन टू दारुल ईमान इंस्टीट्यूट, वेन अ मैन पासिस अवे हिज गुड डीड्स विल आल्सो कम टू एन एंड एक्सेप्ट फॉर 3 सदका जारिया, जिसमें जैसे चैरिटी के लिए जो भी काम रहता है, अ नॉलेज विच इज बेनिफिशियल आर अ वर्चूज डिसेंडेंट हु प्रेज फॉर हिम। तो ये अबू हुरैरा की रवायत है, सही मुस्लिम की है, जज़ाकअल्लाह खैर फॉर सदका जारिया, हेल्प स्प्रेड दी वर्ड। तो फेसबुक पर आप आपके जानने वाले जितना इसको आगे शेयर करें, और इस वक्त तक 106 लोगों ने शेयर कर लिया है, 106 पीपल ने इसको शेयर किया है, और अभी तक जो पैसे हमारे इनके पास जमा हुए हैं बच्चों, इन्होंने जो शुरू किया है, 2175 जमा हो गए, 2175। और मेरा इसमें कोई अमल दखल नहीं है, मैंने किसी को नहीं कहा, बच्चों ने मुझे लिंक भेजा है कि आंटी हम आहमद के सदका जारिया के लिए, और देखें उन्होंने ये नहीं कहा कि हम ये कर देंगे वो कर देंगे, उन्होंने कहा कि जहां वो काम करता था जो उसको करना पसंद था, तो कुरान इंस्टीट्यूट में हम ये पैसे दे देंगे, और 25,000 का उन्होंने अपना गोल जो है मुकर्रर किया है। और मैं उन बच्चों पे सोचने लगी, मुझे उन पे रश्क आने लगा, मुझे उन पे प्यार आने लगा, और जिसमें लोगों ने 50 भी दिए हैं, 100 भी दिए हैं, 10 भी दिए हैं, बच्चे 10 भी दे रहे हैं, 20 भी, और नॉन मुस्लिम भी दे रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे क्लास फेलोज और कुलीग जॉब करने वाले सब लोग उनके यहाँ, तो इस तरह की चीज़ इस तरह, तो यानी गो के दारुल ईमान उनका हिसाब कर लेगा, क्योंकि पूरी लिस्ट आ रही है ना, नामों से हम अंदाज़ा कर रहे हैं। मैं ऐसी मैं जैसे देखती हूँ कुछ देर बाद कि एक दोस्त ने $200 भी दिए हैं, तो मैंने कहा मास ये लड़के, यानी आमतौर पर बच्चों के पास कहाँ इतने पैसे होते हैं, तो कहते हैं मामा हाई स्कूल में इसका क्लास फेलो था, इसको पता चला है, तो अब अल्लाह ने इसको कोई अच्छी जॉब दी हुई है, तो उसने $200 भी दिए, और बेशुमार लोग दे रहे हैं, और जिसमें अब हमारे अब दोस्त अहबाब जो जो शेयर करते जा रहे हैं तो वो भी दे रहे हैं। तो यानी आप देखें कि यानी अब अल्लाह बेहतर जानता है कि जो भी उसका अंदाज था, जो भी उसका स्टाइल था, उसके बच्चों दोस्तों तक जो भी मैसेज पहुंचा है, तो कितना अच्छा मैसेज है कि सदका जारिया के तौर पर उसके दोस्तों ने इस हदीस को कोट किया है, और वेबसाइट पर कितने लोग पढ़ रहे हैं, आमीन कह रहे हैं, अच्छे जुमले कर लिख रहे हैं, और मग़फ़रत की दुआ भी कर रहे हैं। तो इसमें भी आप भी चाहें तो वेबसाइट पर जाके GoFundMe.com है, और इस जो है वो जवाद मेहर मोहम्मद अहमद जाहिद के लिए है, तो आप चाहें तो हम आपको लिंक भी दे सकते हैं, जो चाहें तो इस तरह से मदद कर सकते हैं। और दूसरा अबू बकर सदीक रदी अल्लाह अन्हु का सदका जारिया, उसकी छोटी सी मिसाल, तो मेरा और आपका सदका जारिया क्या है कि हम सदका जारिया के जो काम हो रहे हैं उसमें हिस्सा डालें। ऐसी तनजीमें, ऐसी तहरीकें, दारुल ईमान इंस्टीट्यूट आपके सामने है, अभी दारुल ईमान की किताबें प्रिंट होने वाली हैं, उसमें आप हिस्सा डाल सकते हैं, किताबों की कीमत कम हो जाए उसमें, ताकि तो किसी भी तरह से हम एक अच्छी बात दूसरों को आगे जो है वो पहुंचा सकते हैं। तो मेरा और आपका सदका जारिया कौन बनेगा, और सदका जारिया उसको बनाने के लिए जैसे हमें रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो अहदीस मिलती हैं, तो उसमें से ये वाली बात भी के जैसे अभी बच्चों ने वो इंग्लिश में आपने पढ़ी कि मरने के बाद इंसान के, इंग्लिश में आपने वो हदीस सुनी, अभी हमने सदका जारिया के बारे में हदीस इंग्लिश में सुनी कि मरने के बाद इंसान के अमाल का सिलसिला मुनक़ते हो जाता है सवाए तीन चीज़ों के, जिनका सवाब मैयत को पहुंचता रहता है, नंबर एक सदका जारिया, नंबर दो लोगों को फ़ायदा देने वाला इल्म, और तीसरी चीज़ नेक औलाद जो मैयत के लिए दुआ करती है। तो सदका जारिया तो समझ में आया, और इसी तरह लोगों को फ़ायदा देने वाला इल्म, तो अब मेरे बेटे की तो शादी नहीं हुई थी, तो उसकी कौन उसके लिए सदका जारिया बने, तो मैं ये सोच रही थी कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने वालदैन की ज़िंदगी में उसकी मौत इसलिए की है कि पेरेंट उसके लिए दुआ करें, और पेरेंट्स की दुआ अल्लाह कबूल करता है, दुखी हों, दर्दमंद हों, और उसके साथ वो अपनी औलाद की मग़फ़रत की दुआ करें, और वो करते रहें। तो उम्मीद है कि वह अबूहुमा सालिहा, कुरान में हमें ज़िक्र भी मिलता है, तो ये गवाही के तौर पर कि वालदैन जो है अपने दामन को, मैं सोच रही थी कि मेरी डेथ पहले क्यों नहीं हुई, मेरे बच्चे की पहले हो गई, तो फिर मैं ये सोच रही थी कि इसके कुछ रीज़न्स हैं, उसमें एक जैसे मैं जायज़ा ले रही थी, गायब का इल्म अल्लाह जानता है, कि मैं हमेशा और पिछले दिनों तो बहुत कसरत से तहज्जुद में आगे पीछे दुआ कर रही थी कि अल्लाह ताला मुझे, अक्सर मेरे दोस्तों को ही पता है मैं कि रब्बना हब लना मिन अज़वाजिना व ज़ुर्रियातिना कुर्रता आयुनी वजअलना लिलमुत्तकीना इमामा, मैं ये दुआ बहुत मांगती हूँ, तो हमारे बच्चे मुत्तकियों के इमाम बने। मुझे सिर्फ लीडरशिप नहीं चाहिए, ऐसी लीडरशिप जो नेक लोगों को लीड करे, यानी वो खुद बहुत नेक होगा तो नेकों को लीड करेगा ना, तो मैं ये दुआ बहुत मांगती थी। तो शायद यानी जो अल्लाह यानी हमने उसके लिए जो गोल तय किया था, तो शायद वो इतने सख्त मराहल से या दर्दनाक उससे गुजर कर शायद नहीं उस तक आ सकता था, शायद मेरे दिल में ये ख्याल ही आता है। दूसरा मुझे ऐसा महसूस होता है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त जो है वो मुझसे मेरे बच्चे से इतना ज़्यादा प्यार करते हैं कि वो ये चाहते हैं कि हम वालदैन अपने बेटे के लिए जो है वो दुआ करें, और वालदैन की दुआ बच्चे के हक़ में कबूल होती है, तो अल्लाह उसके दर्जे बुलंद करना चाहता है। उसको बहुत ऊंचा मकाम देना चाहता है। और फिर ये एक ख़ास बात यह है कि जैसे मैं भी अपने लिहाज से, मैं या ज़ाहिर जो कुछ सोचते हैं या जो कुछ करते हैं, तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त कम्युनिटी के अंदर, सोसाइटी के अंदर ऐसे दर्द, ऐसे टूटे हुए दिल वाली बहुत से लोग हैं जिनके साथ हादसात वाकयात पेश आए हैं, तो एज ए दाई के मुझे उनका दर्द और ज़्यादा जो है वो महसूस हो। जैसे मैं जिस दिन से डेथ हुई है उस दिन से मसलसल ये सोच रही हूँ कि इसमें अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने क्या खैर रखी है। मैं ये नहीं सोच रही कि ऐसा क्यों हुआ, मुझे इसका क्या नुकसान होगा, मैं ये सोच रही हूँ इसके फ़वाद क्या हैं, इसके मुनाफे क्या होने वाले हैं, क्योंकि हमें कुरान जो है वो यही अप्रोच देता है। और इसके साथ ही मतलब उसके उसके जैसे वो मैं उसके नोट्स देख रही थी, जैसे मेरे साथ टैक्स पर बात करता था, तो इस दफ़ा उसने अपनी आमदनी, नई नई जॉब शुरू हुई थी, ज़ाहिर पढ़ाई जॉब चीज़ें चल रही थी साथ, तो कहने लगा मामा मैं ज़कात देना चाहता हूँ, पिछले साल ना तो पहली दफ़ा ज़ाहिर है। तो मैंने कहा कि अच्छा, फिर हिसाब किया तो मैंने कहा कहता कैसे, मैंने कहा ऐसे ऐसे ज़कात होती है जो बैंक में पैसे पड़े हुए रह जाएँ और हर 100 पर $2.50। तो कहता है मामा फिर मेरे $800 थोड़े कम ही बनते थे, कहा कि अच्छा फिर मेरा $800 बनते हैं, वो मुझे उसने दे दिए। तो जैसे कुछ गरीब तालिबे इल्मों की मदद में वो, जब मैं कहती थी तो फीस में वो मदद कर देता था, और कुर्बानी हर साल देता था, कुछ सालों से हर साल उसकी कुर्बानी होती थी। इस साल मैंने कहा बेटा मैं चाहती हूँ तुम कैनेडा में कुर्बानी दो अपनी, मैंने शाम में भेजी, मैंने कहा वहाँ के मुसलमान महंगी है लेकिन मतलब वहाँ के लोगों को मेरा दिल चाहता था कि गोश्त जो है खिलाया जाए, तो मैंने अपनी वहाँ भेजी। इसको कहा मैंने बेटे तुम यहाँ पे करो, और बाकी फिर नानी नाना दादी दादा या जाहिद की या सब वो डिफरेंट जगह पे जहाँ पे भी हुई, लेकिन ये जो है वो इसका किया। तो कुर्बानी हर साल देता था, और जैसे इस साल माशाल्लाह उसने ज़कात भी अदा की। उम्रे के लिए कहता था मामा आपको लेके जाऊँगा, फिर दारुसलाम से लेके जाऊँगा, अच्छी जगह 5-स्टार होटल में ठहराऊँगा, मामा हम जल्दी जाएँगे। तो अभी अपनी बहन को उम्रे के लिए भेज रहा था, ये भी मार्च में उसने ऑफ़र की थी कि मैं देता हूँ टिकट, अम्मी अबू आपका भी देता हूँ, आप लोग उम्रे के लिए जाएं। बहरहाल और भी उसकी माशाल्लाह बहुत सी अच्छी, यानी कभी भी कहीं भी ज़रूरत हो तो अपना कार्ड अपना पासवर्ड सब कुछ बताया हुआ था, जब जहाँ जैसे बग़ैर हिसाब के मामा आप पैसे खर्च किया करें जहाँ भी आपको ज़रूरत हो ना। और मामा आप सोचा ना करें, मामा आप फ़िक्र ना किया करें हर बात पर, वो ये दारुल ईमान आप ये काम किया करें, कहता था आपने कभी इसको रोकना नहीं है इस काम को, आप बेस्ट काम कर रही हैं मामा जो आप काम कर रही हैं। हमेशा ऐसे आके थपकी देता था, बात करता था, और बात ऐसे करता था जैसे कोई ले दे जाए कि मामा बस कर गुजरें, मामा हम आपके साथ हैं। सब बच्चे, तीनों बच्चे माशाल्लाह, और अल्हम्दुलिल्लाह जाहिद का भी साथ शामिल है, क्योंकि अगर वो शौहर साथ ना दे तो आप कैसे काम कर सकते हैं, और वो घर पर ही होते हैं। तो मैं जो कुछ भी करती हूँ सबसे पहला क्रेडिट अल्लाह के बाद मेरे वालदैन को, शादी के बाद मेरे सास ससुर और मेरे शोहर को, मेरे ससुराल वाले और मेरे दोस्त अहबाब और मेरे बच्चे, तो इन सब की मैं गवाही देती हूँ कि माशाल्लाह नेकियों काम में इन्होंने मेरा साथ दिया है। और दारुल ईमान और जो मैं टूटी फूटी कोशिश कर रही हूँ ये इनके लिए इंशाल्लाह सदका जारिया जो है वो बनेगा। तो मुझे भी सोचना है कि अब मैं चाहती हूँ कि मेरे बच्चे, आपके बच्चे, हम सबके बच्चे, हम सबके लिए सदका जारिया बने। और ऐसा नहीं है इतनी आसानी से बच्चे नहीं मानते, मुश्किल लगता है, नहीं आता है ये वो, बस खुशी उस वक्त होती हूँ जब वो ये काम थोड़ा सा भी कर देते हैं, उनको पता है कि दारुल ईमान का या दीन का काम करेंगे तो मामा बाबा ने हम खुश हो जाना है, तो फिर उनको पता है कि खुश करने का तरीका क्या है। तो इसी तरह जैसे बच्चों को मनाते हैं ना, रूठों को मनाते हैं, अपने दिल को भी तो मना मना के जाए नमाज पे लेके जाते हैं ना, अल्लाह की अतात पे लेके जाते हैं, कभी मुश्किल लगता है, कभी सर्दी लगती है, कभी नींद आ रही होती है, कभी थके हुए होते हैं, तो दिले नादा को मनाते हैं ना। तो इसी तरह बच्चों को कभी उठा के, कभी फिसला कर, कभी मना कर, कभी प्यार करके, बेटा इसका ये है, इसकी ज़रूरत है, तो उनको भी साथ साथ छोटी छोटी कोशें रहीं। तो अल्हम्दुलिल्लाह मैं अल्लाह का शुक्र अदा करती हूँ कि अहमद जो था वो नेकी के कामों में हमारे जो था वो साथ रहता था। तो ये एक बड़ी बात है। अभी भी माशाल्लाह कई लोग हैं जिन्होंने कई जगहों पर, जैसे मेरे अपने फैसलाबाद शहर मेरे मेके में ही उसकी जो है कई नमाज़ें जनाजा हुई हैं, हमारे गांव में भी हुई है, जो हमारा देहात का है, जैसे हम ज़मींदार लोग हैं वहाँ भी, फिर जहाँ मेरा हम शहर में रहते हैं वहाँ दो जगह पे, फिर वहाँ पे जो दीनदार हलकों में मैं जाती थी, स्टूडेंट होते ही मैं दीन का काम करती थी, जब मैं 9th, 10th, 11th, 12th में थी, तो मेरे उस ज़माने के और कॉलेज के ज़माने के लोगों ने वहाँ पर भी नमाज जनाजा का अहतमाम किया है। फिर सरगोधा में हुई है, सऊदीया में मेरे भाई थे उन्होंने किया है, और जैसे बरतानिया में, फिर ह्यूस्टन में, इकना में, न्यूयॉर्क में उसके हेडक्वार्टर में, और यहाँ पे मतलब मुख्तलिफ जगहों पे अल्हम्दुलिल्लाह। इसी तरह एक दोस्त ने फौरन कहा कि अहमद के लिए मैंने उमरा किया है, यानी मैंने सोचा मेरी दोस्त मुझसे इतनी मोहब्बत करती है, उसको पता है इसकी इस वक्त ये बहुत सुरदा है, दुखी है, और उसने कहा कि मैंने अभी अभी हरम में आई हूँ और मैंने उमरा किया। फिर किसी और औरत को मैं जानती भी नहीं थी, उसने कहा कि मैंने पहला उमरा जो है वो अहमद के नाम का किया है। तो ये सब क्या है? मेरा रब मेरे दिल को जैसे मूसा अलैहिस्सलाम की वालदा ने जब अपने बेटे को पानी में उसने डाला था, समंदर में डाल, जब तुम्हें ख़तरा महसूस हो तो उसको पानी में फेंक देना, फिर यम्मी, और उस वक्त ला ताज़नी ला तखाफी ला ताज़नी, ना गम करना ना खौफ करना, मैंने तो अपने बेटे को इस सफ़र में खुद नहीं डाला था ना। उनका और मेरा फ़र्क क्या है? उन्होंने खुद डाला था और अल्लाह ने उन पर जो था वो हौसला जो था वो नाजिल कर दिया था। मैंने डाला तो नहीं, लेकिन जो इस आजमाई से मैं आजमाई गई अल्हम्दुलिल्लाह, कि जब मैंने अल्हम्दुलिल्लाह कहा, जब मैंने इन्ना लिल्लाह कहा, तो मुझे अल्लाह की रहमत जो है महसूस होने लगी। और ये बात भी कि अल्लाह ने दिल को बांध दिया, और ये कुरान में भी है कि असाबे कहफ को भी अल्लाह ताला कहते हैं कि जब वो खड़े हो गए थे तो फिर हमने उस वक्त उनका दिल जो था वो क्या किया था, मजबूती से बांध दिया था। तो ये अल्लाह की सुन्नत है कि जब अल्लाह के रास्ते में निकलते हैं, अल्लाह से मांगते हैं, तो अल्लाह जो है वो नवाजता चला जाता है। तो इस मौके पर आखिरी एक बात जो कहना चाहती हूँ, मुझे उम्मीद है, मुझे ऐसा लगता है कि मेरे बेटे की मौत जो है वो शहादत की मौत है। उस सिलसिले में भी हदीस है जो हमें रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिसमें शहादत की जो हैं वो इकसाम हैं, और उनमें से शहादत की एक किस्म जो है वो क्या है, जैसे आपने फरमाया कि फ़ी सबीलिल्लाह कत्ल होने के अलावा शहीद सात किस्म के हैं, ताउन से मरने वाला, नंबर एक गरक होने वाला, नंबर दो, नंबर तीन पहलू के दर्द से मरने वाला यानी पेट के दर्द से, नंबर चार पेट की बीमारी से मरने वाला, नंबर पाँच जल जाने वाला, जल कर मरने वाला, नंबर छः मलबे के नीचे दब कर मरने वाला, जैसे किसी चीज़ के नीचे आकर, और वो औरत जो बच्चे की वजह से मर जाए साथ में, और ये सब के सब शहीद हैं। तो ऐसा महसूस होता है कि इंशाल्लाह, क्योंकि उम्मीद और खौफ के दरमियान कैफियत है, कभी एक गालिब आती है कभी दूसरी, लेकिन मोमिन ईमान कहते ही इसको हैं कि उम्मीद और खौफ के आप दरमियान रहते हैं ना। हम यकीन से ये कह सकते हैं कि ज़रूर जो है वो जन्नती है, या मैं या हम जो दुनिया से जो चले गए, और ना हम यकीन से ये कह सकते हैं कि वो जन्नती नहीं है, क्योंकि उम्मीद है, ऐसा महसूस होता है, क्योंकि हमें हम ऐसा गुमान करते हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह इंशाल्लाह, क्योंकि जैसे ये जो सात मैंने किस्में बताई हैं, दो पूरी उतरती हैं इस वक्त मेरे बेटे की डेथ पर, दब कर मरना और उसके बाद आग लग कर मरना। तो ये एक स्कॉलर आए तो उन्होंने आकर कहा कि एक नहीं बल्कि दो जो है शहादत की अकसाम जो है वो उस पर पूरी उतरती हैं, और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उसके वालदैन की वजह से पता नहीं उसके दर्जे कितना बढ़ाना चाहता है। तो बहरहाल ये सब बातें बहुत अहम हैं। इमाम इब्ने तैमिया रहमतुल्लाह अलैह का एक कौल है, मोमिन ऊद की तरह है। ऊद पता है किसे कहते हैं? एक खुशबू वाली लकड़ी होती है, जब तक ऊद को जलाया ना जाए इसकी खुशबू नहीं आती। तो मोमिन को जब तक आजमाइश की चक्की में जो है वो डालकर पीसा ना जाए, जब तक उसका इम्तहान ना लिया जाए, तो उसके ईमान जो है ना उसका भी पता नहीं चलता कि वो सच्चा है कि वो झूठा है। इमाम मालिक के पास इमाम शाफ़ी आए रहमतुल्लाह और पूछा कि कब कोई सच्चा इमाम बनता है, यानी कब हम अच्छे सच्चे बनते हैं हैसियत मुसलमान के। तो उन्होंने कहा कि कोई भी उस वक्त तक सच्चा इमाम नहीं बन सकता जब तक कि उसका इम्तहान ना हो। तो जब तक किसी के भी ईमान का इम्तहान ना हो तो वो सच्चा मोमिन नहीं बन सकता। और इसी तरह जो है वो मेरे भी और आपके भी ईमान की और अकीदे की आजमाइश हो रही है, इम्तहान हो रहा है, और ये मेरा और आपका भी इम्तहान है ना। तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त मुझे और आपको इस इम्तहान में पास करे, क्योंकि ऐसे मौक़ों पर हम लोगों के मुख्तलिफ रवैये बन जाते हैं। कुछ लोग बोलना छोड़ देते हैं, कुछ जो है वो मातमी लिबास पहन लेते हैं, जैसे रस्में, ऐसी चीज़ें जो इस्लाम में जिनका कोई ज़िक्र नहीं है। जैसे हज़रत खनसा के बारे में आता है, जब उनका भाई सखर नामी भाई फौत हुआ तो उन्होंने अपने सर पर एक बालों की चोटी रखी हुई थी जिसको उन्होंने काटा नहीं था। हज़रत इस्लाम कबूल किया, हज़रत उमर के पास आई, पूछा ये कहा क्या, कहा कि ये मैं अपने भाई का सोग मना रही हूँ, पता नहीं कितने साल पहले भाई फौत हुआ था। तो हज़रत उमर ने कहा कि इस्लाम में ऐसा सोग जायज़ नहीं है। कुछ लोग काला लिबास पहनकर, कुछ लोग साल हर साल सोग मनाते हैं और फिर कहते हैं कि हमारा दिल नहीं चाहता, लेकिन दिल कोई चीज़ नहीं है। तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त मुझे और आपको हुस्ने अमल करने की तौफीक अता करे। और फिर जैसे बिल्कुल इस वक्त एंड पर भी मैं एक दफ़ा फिर हमारी ऑनलाइन की बहनें हैं, मेरे करीब हैं या दूर हैं, जहाँ भी हैं, मैं हकीकत ये है कि मैं आपकी बहुत मशकूर हूँ, आप मेरे बेटे की खालाएं हैं, आप मेरे बेटे की बहनें हैं, और इसी तरह जो भाई हैं यानी दीनी भाई हैं या दोस्त है बहाब हैं रिश्तेदार हैं पड़ोसी हैं वो सब इस वक्त हमारे गम में बराबर के शरीक हैं। और हकीकत यह है कि मैं आपकी बहुत एहसानमंद हूँ और मैं आपका सारी ज़िंदगी भी आपको थैंक यू कहना चाहूँ ना तो मैं आपका शुक्रिया नहीं अदा कर सकती, और आई एम वेरी थैंकफुल टू यू फ्रॉम दी बॉटम ऑफ माई हार्ट। कहाँ कहाँ से बूढ़े जवान बर्फ़ों के अंदर यूथ की बच्चियाँ बच्चे लड़के सब आए हैं, दुआएं कर रहे हैं, कॉल्स कर रहे हैं, टैक्स कर रहे हैं। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आपको इतनी खुशियाँ दे, आपसे इतनी मोहब्बत करे, आपसे इतना प्यार करे कि आप तसव्वुर भी ना कर सकें। अल्लाह आपसे राज़ी हो, दुआ कर लेते हैं। أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم الحمد لله رب العالمين الحمد لله رب العالمين الحمد لله رب العالمين يا رب العزة يا خالق يا مالك يا الله يا رحيم يا كريم يا الله يا رحيم يا كريم يا الله اغفر لنا وارحمنا اللهم اغفر لحينا وميتنا وصغيرنا وكبيرنا وذكرنا وأنثانا وشاهدنا وغائبنا وغائبنا اللهم من أحييته منا فأحيه على الإسلام ومن توفيته منا فتوفه على الإيمان ولا تحرمنا أجره ولا تدلنا بعده اللهم اغفر له وارحمه وعافه واعف عنه وأكرم نزله ووسع مدخله واغسله بالماء والثلج والبرد واغسله بالماء والثلج والبرد واغسله بالماء والثلج والبرد ونقه من الخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس اللهم أبدله دارا خيرا من داره اللهم أبدله دارا خيرا من داره وأهلا خيرا من أهله وأهلا خيرا من أهله وأدخله الجنة الفردوس وأدخله الجنة الفردوس يا رب العزة یہ دعائیں میری ان تمام بہن بھائی دوست احباب پڑوسی رشتہ دار کل دنیا کے مومن مومنات مسلم مسلمات کے لیے بھی قبول کر لے جو دنیا میں زندہ ہیں اور جو دنیا سے چلے گئے ان کے پیاروں کے لیے بھی قبول کر لے جو کہ موت کی گھاٹی میں اترے ہیں اور موت کے تلخ گھونٹ کو انہوں نے پیا ہے یا رب العزت ان سب کو بخش دے مرنے والوں کی قبر کو نور سے بھر دے مرنے والے کی جو قبر ہے اس کو جنت کے باغوں میں سے باغ بنا دے میں قبرستان گئی اے رب میں تیرے صدقے جاؤں یہ بڑی خوبصورت بستی ہے جو وہاں پہ بسی ہوئی ہے اور جب میرا بیٹا کا جنازہ گیا تو میں ساتھ نہیں گئی کیونکہ تیرے پیارے رسول نے فرمایا کہ تیرے پیارے رسول نے عورتوں کا جنازے کے ساتھ جانا پسند نہیں کیا افضل نہیں ہے کہ عورتیں جائیں میں نے کبھی اپنے دل سے یہ نہیں پوچھا کہ میرا دل کیا کہتا ہے دل جو ہے وہ نادانی کبھی کر جاتا ہے نہ چاہتے ہوئے کبھی غلطی ہو جاتی ہوگی لیکن دانستہ طور پہ ہمیشہ یہی کوشش رہی میں مسجد میں بیٹھی ہوں اور تو اس پہ گواہ ہے ہر موقع پہ شعوری یہ کوشش رہی کہ اے میرے رب تو کیا چاہتا ہے تیری رضا کس میں ہے تیری پسند کیا ہے جس میں تیری خوشی نہیں اس میں میری خوشی نہیں تو جس طرح سے راضی ہے میرے رب میں تجھے کیسے مناؤں میں تجھے کیسے پیار کروں میں کیسے تیرا شکر ادا کروں تو نے مجھے انگنت نعمتوں سے نوازا میرے تین بیٹے اور ان میں سے بس ایک لیا ہے मेरे तीन बच्चे और उनमें से बस एक लिया है। अल्हम्दुलिल्लाह, तू चाहता तो तीनों ले सकता था। तू बहुत रहीम है, तू बहुत करीम है। दो खिलौने मेरे पास अब भी मौजूद हैं जो तेरी इमानत है, अहमद की इमानत को तूने दिया एक ख़ास मुद्दत के लिए। और बच्चा जब उसको कोई खिलौना दिया जाता है खेलने के लिए, और जब उससे खेलता है तो भूल जाता है कि खिलौना वापस भी लिया जा सकता है। लेकिन जब तूने उसको वापस लिया, झटका तो महसूस हुआ कि जैसे किसी को चीज़ कोई छीन रहा है, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह इस ज़बान ने कोई आह नहीं की, कोई फगा नहीं हुई, कोई नशुक्री का जुमला नहीं निकला। या रब्बुल इज्जत, ये सब तेरा एहसान है, ये तेरी दीवी तौफीक थी कि इस अहम सदमे को, इस अजीम सदमे को, इस खूबसूरत सदमे को हमने हंसते खेलते, मैंने और मेरे शोहर ने बर्दाश्त किया, हमारी फैमिली ने बर्दाश्त किया, तो इसको कबूल कर लेना। और अल्लाह, तुझे पता है कि मैंने इसको ऐसे क्यों बर्दाश्त किया? क्योंकि मैं तेरे प्यारे रसूल की सुन्नत को ज़िंदा करना चाहती हूँ। हम, मैं और मेरा शोहर, हम तेरी कुरानी आयात को ज़िंदा करना चाहते हैं, हम तेरे प्यारे रसूल की सुन्नत को ज़िंदा करना चाहते हैं, हम सहाबा साहबियात के उसवा पे चलना चाहते हैं। और ऐ मेरे रब, मेरा इस बात पर यकीन है तू कभी मुझ पर वो इम्तहान नहीं मुझे डालेगा, मुझे किसी कभी, ऐ मेरे रब, तू कभी मुझे किसी ऐसे इम्तहान में नहीं डालेगा, तू जाहिद को और मुझे कभी किसी ऐसे इम्तहान में नहीं डालेगा, किसी ऐसी आजमाइश में नहीं डालेगा जिसमें हम पूरा ना उतर सकें। ला युकल्लिफुल्लाहु नफ्सन इल्ला वुसअहा, और मेरे रब की बात झूठी नहीं हो सकती, मेरा इस पर यकीन है। तो अल्हम्दुलिल्लाह तूने ही डाला, और तूने ही इसमें गुजरने की राहें सुझवाईं, और तूने ही फूलों की तरह नज़ाकत के साथ दोस्त रिश्तेदार पड़ोसी दुनिया भर से जिस मोहब्बत से, कभी दो बजे भी रात को कॉल आती है तो मैं उसको अटेंड करती हूँ कि ये मेरे रब की मोहब्बत का पैगाम आया है कि ए नसरीन, ला तखाफी ला ताहज़नी, और मैंने तेरे दिल को मजबूती से थाम लिया है। मुझे ऐसा लगता है कि अर्श से आवाज़ आ रही है, मुझे ऐसा लगता है फरिश्तों के ज़रिए तूने जो है हमें थामा हुआ है, ये सब तेरे एहसानात हैं। और ऐ मेरे रब, बस एक दरख्वास्त है कि इन्नम सब्र इंदा सदमतिल उला, स्टार्ट तो अच्छा है, पेपर स्टार्ट करने के लिए तो दिल गवाही देता है कि स्टार्ट तो अच्छा लिया है, लेकिन वो जो ज़ाहरी तौर पर 3 घंटों की मोहलत, और मुझे नहीं पता कि मेरी, मेरे शोहर की, मेरे घर वालों की ज़िंदगी की कितनी लंबी मुद्दत है। बस एक दरख्वास्त है कि ज़िंदगी के आखिरी सांस तक अहमद के मामले में कभी जो है वो हाईएस्ट मार्क्स में से कोई नंबर कटने नहीं चाहिए। हाईएस्ट मार्क्स चाहती हूँ, और मैं जन्नतुल फिरदौस, हम चाहते हैं, हम, हमारे घर वाले, और हम जन्नतुल फिरदौस में अम्बिया, सिद्दीकीन, शहदा और सालहीन का साथ चाहते हैं, तेरे प्यारे रसूल की सोबत चाहते हैं। और या रब्बुल इज़्ज़त, तूने कहा कि सब्र कर, तेरे प्यारे रसूल ने कहा कि इन्नम सब्र इंदा सदमतिल उला, मुझे आम सब्र नहीं चाहिए, मुझे याकूब अलैहिस्सलाम का सब्र चाहिए। ऐ मेरे रब, मुझे अय्यूब अलैहिस्सलाम का सब्र चाहिए, हमें वो सब्र चाहिए जो हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने बेटे इब्राहिम की वफ़ात पर किया था, अपनी औलाद पर किया था। फ़सबरुन जमील, तो बस तू हम सबको सब्र जमील अता कर, खूबसूरत सब्र, जो ज़ाहरी तौर पर भी खूबसूरत हो और बातनी तौर पर भी खूबसूरत हो। और या रब्बुल इज़्ज़त, ये मग़फ़रत की दुआएं, ये जन्नतुल फिरदौस की दुआएं, ये रसूल अल्लाह का जन्नत में साथ, ये सारी दुआएं मेरी इन तमाम बहनों के लिए कबूल कर ले, जो आज इस वक्त महफिल में मौजूद हैं, वो जो ऑनलाइन सुन रही हैं, वो जो हमारे बहन भाई ऑनलाइन सुन रहे हैं, वो जो बाद में रिकॉर्डिंग सुनते हैं, जो यहाँ मिसिसागा में हैं, जो कैनेडा में हैं, जो कुल दुनिया में कहीं भी, ऑस्ट्रेलिया, बरतानिया, पाकिस्तान, इंडिया, अमेरिका की डिफरेंट स्टेट, कैनेडा की डिफरेंट स्टेट, जहाँ जहाँ भी, जो जो भी इस पैगाम को सुने, हमारी दुआओं को या रब्बुल इज्जत सब की मग़फ़रत कर दे। और जिस दिन से मेरा बेटा जो है उसका एक्सीडेंट से डेथ हुई है, मैं दुआ करती हूँ या अल्लाह, मेरे तमाम बहन और भाई, कुल दुनिया के मोमिन मोमिनात, इन सब के बच्चों की जवानियों की खैर कर, जब ये घरों से निकलें तो इनकी हिफाजत कर, फरिश्तों के ज़रिए इनको हादसात से बचा, मेरे बच्चों की, मेरे दोस्तों के, मेरी बहनों के बच्चे, इनके बच्चों को उनके आंखों के आंसू ना बनाना, या रब्बुल इज़्ज़त उनके दिल की ठंडक बना, उनके सीने का नूर बना। अल्लाहुम्मा अंतज अल कुरान रबी या कल्बी ونورا صدری وجلا حزنی وذهاب همی وغمی. اور یا رب العزت ہمارے بچوں کو لٹنے سے بچا لے، ہمارے بچوں کو نائٹ کلب کی زینت نہ بنانا، ہمارے بچوں کو جھوٹ بولنے والا نہ بنانا، ہمارے بچے اپنے گھر نیک اور متقی لڑکیوں کے ساتھ بسائیں، نیک اور متقی لڑکیوں کے ساتھ بنائیں، ظاہر کو دیکھنے والے نہ بنیں بلکہ جو تو نے شادی کا معیار دیا ہے تقویٰ، اس کے مطابق اپنی شادیاں کرنے والے بنیں. گھروں میں جوان بیٹیاں بیٹے بیٹھے ہیں، میری بہنیں پریشان ہیں، میرے بھائی پریشان ہیں، یا رب العزت تو میری گھروں میں جو جوان بیٹیاں ہمارے گھروں میں بیٹھی ہیں، جہاں جہاں بھی مائیں پریشان ہیں، جن کی طلاقیں ہو گئی ہیں، جن کا خلع ہو گیا ہے، یا وہ کنواری ہیں، ان کو غیب سے اچھے رشتے عطا کر، بالکل ایسے ہی جیسے موسیٰ علیہ السلام کو شعیب کے گھر میں بھیج دیا تھا، شعیب علیہ السلام کے گھر میں، کہ رب انی لما انزلت الی من خیر فقیر. ایک دعا پڑھی اتنی چھوٹی سی کہ میں فقیر ہوں اور تو جو خیر بھی نازل کرے میرے دامن کو بھر دے. تو نے موسیٰ علیہ السلام کو جاب بھی دے دی، تو نے موسیٰ علیہ السلام کا رشتہ بھی کر دیا اور ان کو گھر بھی عطا کیا. تو میری بیٹیوں کو نیک اور اچھے زوج عطا کر، میرے بیٹے جو گھروں میں بیٹھے ہیں، جن کی طلاق ہو گئی ہے، جن کا خلع یا رنڈوا ہے، ڈیتھ ہو گئی ہے جن کے زوج کی، یا وہ ویسے کنوارے بیٹھے ہیں، یا رب العزت غیب سے ان کو اچھے رشتے عطا کر. آج کے دور کے والدین بڑے پریشان ہیں، ہم نے سب نے کوشش کی ٹوٹی پھوٹی اپنے بچوں کی تربیت کی، لیکن ایسا محسوس ہوتا ہے کہ ہم اپنے بچوں کی حالات کو، ان کی نفسیات کو اس طرح سمجھ نہ سکے، ہم حالات کے تقاضوں کو اس طرح سے بھانپ نہ سکے. یا رب العزت تو ایسی ہوائیں چلا جو ایمان والی ہوں، تو ایسی فضا پیدا کر کہ ہمارے بچوں کی آنکھیں حیا سے بھر جائیں، ان کے دل جو ہیں وہ ایمان سے بھر جائیں، ان کو یوسف علیہ السلام کی حیات آ کر، ان کو بی بی مریم کی طرح اپنی عزت عصمت کی حفاظت کرنے والا بنا، ان کو خدیجہ رضی اللہ عنہ کی وفاداری عطا کر، ان کو وقر صدیق رضی اللہ عنہ کی وفاداری عطا کر. اور یا رب العزت ہم اپنے بچوں کو، ان کی جوانیوں کو، اپنے شوہروں کو، اپنے آپ کو، سب کو آپ کی حفاظت میں دیتے ہیں. میری بہن بھائیوں کی تمام نیک اور جائز خواہشات کو قبول کر لے. جو بے اولاد ہیں ان کو اولاد کی نعمت سے نواز، جو بیٹے چاہتے ہیں ان کو بیٹے عطا کر، جو بیٹیاں چاہتے ہیں ان کو بیٹیاں عطا کر، اور جن کو اولاد کی نعمت دی ہے ان کو بہترین طریقے سے ان کی تربیت کرنے والا بنا. میں ان لوگوں میں سے ہوں، میں اور زاہد، تین پیپر تو نے حل کرنے کے لیے دیے تھے تین بچوں کے، اور ایک میرے بیٹے کا پیپر مجھ سے چھین لیا گیا. کرامن کاتبین یعلمون ما تفعلون، اور وقت ختم ہونے پر پیپر چھین لیا جاتا ہے. اور میرا حال یہ ہے کہ بس جیسے اب جو ہے ولا تزر وازرۃ وزر اخرى، اور ولو القا معذیرہ، کہ میں کتنی معذرتیں پیش کروں، لیکن تو خوب بخوبی جانتا ہے کہ اب میں اس پیپر میں نہ کچھ ایڈ کر سکتی ہوں نہ کچھ ڈیلیٹ کر سکتی ہوں. حسرتیں تو ہیں کہ یہ بھی کر لیتی، وہ بھی کر لیتی، ایسے بھی کر لیتی، اب کچھ ایڈ نہیں ہو سکتا اور کچھ ڈیلیٹ بھی نہیں ہو سکتا. میری بہنوں، آپ کے پاس بھی آپ کے بچوں کی شکل میں پیپر موجود ہیں، اور وہ پیپر وقت مقررہ پر چھین لیے جائیں گے. جب چھینے جائیں گے تو نہ ایڈیشن ہے اور نہ ہی کچھ ڈیلیشن ہے، کچھ بھی نہیں ہو سکتا، نہ ایڈ نہ ڈیلیٹ. دو پیپر میرے ابھی باقی ہیں، اور جو پہلا پیپر میں نے مجھ سے چھین لیا گیا ہے، اب ایک ہی میں اس میں میری حالت پر رحم ہو سکتا ہے، میری اور زاہد کی، کہ اللہ تعالیٰ بغیر حساب کے جو ہے ہمارے بیٹے کو بخش دے. اور اللہ رب العزت جو ہے، جیسے کہتے ہیں نا، پیپر جب دیتے ہیں تو ممتحن کو غلطیوں کا پتہ نہ چلے، لیکن یہاں کا جو ممتحن ہے، اللہ رب العزت یعلمون ما تفعلون، اور وہ کیسا ہے، علیم ہے، خبیر ہے، اس کے فرشتے جو ہیں یعلمون ما تفعلون. تو یا رب العزت تو چاہے تو کسی کی ایک نیکی کو قبول کر کے تو اس کو بخش دے. اور میرا بیٹا اپنی ماں کے ساتھ بہت صلہ رحمی کرنے والا تھا، اپنے باپ کا اطاعت گزار تھا، مطیع تھا، نیکی کا نام لیا جاتا تھا، جب دین کا نام آتا تھا تو سر اطاعت جھکا دینے والا تھا، اور تیرے فرائض کی ادائیگی کرنے والا تھا، اچھے اخلاق کا مالک تھا، سخی تھا. اس رمضان میں بھی اس نے فروٹ باسکٹ جو ہیں نان مسلم میں بھی بانٹی ہیں، اور رمضان میں نان مسلم کو بھی افطاری کرواتا تھا کہ ان کو پتہ چلے ماما کہ رمضان کیا ہے، اور ہر اچھا کھانا کہتا تھا ماما آپ پکائیں نا. تو میں کہتی تھی بازار سے لے لو، نہیں ماما میں ان کو अपने मामा का खाना खिलाना चाहता हूँ और बताना चाहता हूँ कि रमज़ान के रोज़े कैसे होते हैं। तो या रब्बुल इज़्ज़त इंसान होने के नाते कोशें वो भी करता था, हम भी करते थे, लेकिन ऐट द सेम टाइम जबकि शैतान हम सब के रगों में खून की तरह गर्दिश करता है, कमी बेशी भी बहुत रही, तो मेरे बेटे की भी बख्शिश कर दे, हमारी भी बख्शिश कर दे, और मेरे तमाम बहन भाई, मेरी तमाम दोस्त अहबाब, और आज महफिल में जो मौजूद है, जो ऑनलाइन है, जो सुन रहे हैं, जो बाद में रिकॉर्डिंग सुन रहे हैं, कहीं भी, इन सब की भी बख्शिश कर दे। अगर कोई और भी इस हादसे से दो चार है, जैसे मैं महफिल में भी जानती हूँ कि कुछ लोग हैं, जैसे एक बहन है कि जिनका 21 साल का बेटा इसी तरह रोड एक्सीडेंट में कुछ साल पहले फौत हुआ था, तो इसी तरह और भी दुखी लोग मौजूद हैं दुनिया भर में। या रब्बुल इज़्ज़त ये दुआएं इन सब के हक़ में कबूल कर ले। और इसी तरह हम अपने माँ बाप के लिए दुआ करते हैं कि हमारे माँ बाप जो हैं उन पर रहम कर, रब्बिरहमहुमा कमा रब्बयानी सगीरा, जो दुनिया में जिनके वालदैन जिंदा हैं उनकी जवानियाँ, उनकी ज़िंदगी के दिन आसान कर दे। या रब्बुल इज़्ज़त उनके बुढ़ापे का सहारा बन जा, उनकी तन्हाइयों का वारिस बन जा, उनको किसी का मोहताज ना कर, उनको चलता फिरता ले जा और उनकी मग़फ़िरत कर दे। और या रब्बुल इज़्ज़त जो दुनिया से चले गए उनकी कब्रों को जन्नत के बाग़ों में से बाग बना दे। या रब्बुल इज़्ज़त जो कर्ज़दार हैं उनको कर्ज़ों के बोझ से निकाल, और जो बीमार हैं उनको सेहत कामला ता कर, और जो हमारे बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं इनका पढ़ाई में दिल लगा, नेक बने, लायक बने, मेहनती बने, अपनी इस्लामिक वैल्यूज़, कल्चरल नहीं, इस्लामिक वैल्यूज़ को ज़िंदा करने वाले बने, और इस दुनिया में यहाँ पे मूसा अलैह सलाम का किरदार अदा करने वाले बने। या रब्बुल इज़्ज़त मेरी तमाम बहनों की दुआएं कबूल कर लें, और वो लोग जो के शाम में फ़िलिस्तीन में शहीद हो रहे हैं, वो जो बेवा है, जो यतीम है, और या रब्बुल इज़्ज़त आज उम्मत मुस्लिमा के खून से ज़मीन भर गई, ऐ हमारे रब तू हमारे गुनाहों की सज़ा लोगों को न देना, तू हमें बख्श दे और उम्मत मुस्लिमा के हाल पर रहम कर। या रब्बुल इज़्ज़त اللهم انصر من نصر دين محمد صلى الله عليه وسلم واجعلنا منهم اللهم اخذل من خذل دين محمد صلى الله عليه وسلم ولا تجعلنا منهم جتنے اسلامک سینٹر مساجد دین میں دنیا میں یہاں پہ دین کا کام کر رہی ہیں جتنے اسلامک سینٹر اور مساجد دین کا کام کر رہے ہیں یا رب العزت ان کی کوششوں کو قبول کر لے جیسے تو نے ابابیل کے ذریعے خانہ کعبہ کی حفاظت کی تھی ہمارے گھروں کی ہماری مساجد کی حفاظت کر या रब्बुल इज़्ज़त इस्लामिक मसाजिद की मदद नेक और मुत्तकी लोगों से कर, हमें अच्छी लीडरशिप चाहिए, तमाम ममालिक में भी जो सरबरा बने इंसाफ करने वाले तकवा वाले हों, और हमारी मसाजिद की लीडरशिप करने वाले भी दुनियादार दौलतमंद लोग नहीं, दीन तकवा के साथ साथ फिर दौलतमंद और सारी खूबियों वाले दें। और या रब्बुल इज़्ज़त हमें अपने बच्चों की अच्छी तरबियत करने वाला बना, नमाज हमने सिखा दी, आप बच्चों को नमाजी बना दीजिए, कुरान की रीडिंग हमने सिखा दी, आप कुरान पर उनको अमल करने वाला बना दीजिए। हमें आता नहीं है, हमें समझ नहीं आती कि कौन से अल्फाज बोलें, कौन सा तरीका इख्तियार करें, कभी इधर को पुश और ड्रैग होते हैं, कभी इधर को लुढ़कते हैं, कभी ये सोचते हैं, कभी वो सोच, और या रब्बुल इज़्ज़त आप हमारी सोचों से बहुत आगे बढ़कर इनके दिलों को फेर दे। या मुक़ल्लिबुल क़ुलूब सब्बित क़ुलूबना सब्बित क़ुलूबहुम, और या रब्बुल इज़्ज़त हमें दीन पर इस्तक़ामत अता कर, उम्मत मुस्लिमा को जग हसाई से और रसवाई से बचा ले, और मरते वक्त सबको कलमा नसीब करना, नामाय माल दाएँ हाथ में हो, और या रब्बुल इज़्ज़त हशर के मैदान की रसवाई से बचाना, पुल से रात से खैरियत से ले जाना, और या रब्बुल इज़्ज़त क़यामत के दिन नामाय माल दाएँ हाथ में हमें अपने बच्चों, हमारे वालदैन, अहले खाना के साथ जन्नतुल फिरदौस में अंबिया रसूल अल्लाह का साथ नसीब करना। और ये दुआएं हम सब बहनों के लिए कबूल कर ले, दारुल ईमान के लिए जगह दे दे, गैब से जगह दे दे, और आमद के लिए, सदका जारिया के लिए, जो भी उसने दारुल ईमान के काम का स्टार्ट किया 2007 में मेरे साथ, 2006-07 में जब दारुल ईमान का नाम भी नहीं था, तो नेकी के कामों में बच्चे जो साथ देते रहे, या रब्बुल इज़्ज़त अब नेक इसको ये जो फलता फूलता एक अब बड़ा पहाड़ बन रहा है, तो उनके उसके लिए सदका जारिया बना, और सारी बहनों के लिए जिसने इसमें ज़रा भी हिस्सा डाला है, जिसने दुआ भी की है, और जो यानी किसी भी तरह इसमें शामिल है, तो सब के लिए इसको सदका जारिया बना। और मेरी सिफारिश को जो एक दुखी माँ है, एक दर्द वाली माँ है, तकलीफ़ वाली माँ है, कुछ बहनों ने जो कैंसर में हैं या कुछ हार्ट पेशेंट हैं या कुछ और बीमारियाँ हैं, बहुत तकलीफ़ में हैं, बहनें भाई जो भी हैं, या रब्बुल इज़्ज़त उनको सेहत कामला ताकर और उनके बच्चों को लुटने से बचा ले, हमारे बच्चों को लुटने से बचा ले। ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعليه وصحبه اجمعين برحمتك يا ارحم الراحمين آمين ثم آمين.